सबसे ज्यादा धोखा भी ना सबसे पास वालों से ही मिलता है बिकॉज
Ami Ganatra is a best-selling author in Hindu mythology.
Dharma aviruddha kamo asmi aham. You have desires. Don't get enslaved by those desires. Ki jab tak aapki smriti dharti pe rehti hai, tab tak aap us lok mein rehte ho. Matlab agar aapke punya ki smriti hai, to aapko punya lok mein aap adhik rahoge. Aur agar aapki paap ki smriti hai, तो आप नरकों में अधिक रहोगे। पहला राजधर्म का लेसन श्री राम को विश्वामित्र जी देते हैं, वो क्या कहते हैं? राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्म सनातनः। राज्य भार, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभालते हैं, उनका सनातन धर्म क्या है, उनका राजधर्म क्या है? अगर प्रजा रक्षण के लिए है, अगर लोगों के अच्छे के लिए है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, वेलफेयर के लिए है, इवन इफ इट मीन्स पर्सनल लॉस, यू हैव टू डू इट, दैट इज राजधर्म, प्रजा सर्वोपरि।
आजकल सभी लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे पॉडकास्ट सारे, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या आती है कि कौन से पॉडकास्ट सक्सीड करते हैं, कौन से फेल करते हैं। स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन स्केल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कारण यह है कि सही स्ट्रेटजीज, सही माइंडसेट, सही टूल्स नहीं है। प्रो पॉडकास्टर टूल्स मेरी अपनी देन है इस दुनिया को। मैंने 0 से 8 लाख सब्सक्राइबर्स का एक पॉडकास्ट खड़ा करा है दोस्त का, जो आप देख रहे हो। हम आपको बताएंगे एनीवेयर फ्रॉम प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन, आउटरीच स्ट्रेटजी और वायरल कैसे होना है, ताकि आप बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उठ बैठ सको, उनसे दोस्ती कर सको और सिर्फ अपने पॉडकास्ट को पार्ट टाइम चलाओ, पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ। इट इज लिटरली दैट इजी। 2024 पॉडकास्ट का साल है और आप प्रो पॉडकास्टर टूल्स ले सकते हैं बहुत ही कंपेरेटिव प्राइस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए आपकी पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू करते हैं। यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और एपिसोड दोस्त कास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसाना। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ वी आर द बेस्ट इन भारत। आज के हमारे गेस्ट का नाम है अमी गनात्रा, शी इज ऑन द पॉडकास्ट ट्वाइस नाउ। आज हम लोगों ने बात करी महाभारत के बारे में। शी इज गॉट अ न्यू बुक आउट कॉल्ड महाभारत अनरैवल पार्ट 2, वी डिस्कस्ड एक इंसान को लीडरशिप और अपना राजयोग, राजधर्म कैसे निभाना चाहिए। हमने महाभारत से लेसन बोरो करे, वी टॉक्ट अबाउट भीष्म पितामह की क्या टीचिंग्स हैं, वी टॉक्ट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग अ धार्मिक पाथ इन द 21st सेंचुरी। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज। Ami is the GOAT of this world and aapko bahut maza aane wale hain, especially if you don't know too much about these stories that are a part of our tradition. So that's it, and the episode with Ami begins in 3, 2, 1. Ami Ganatra ji, swagat hai aapka ek aur baar dost cast pe.
Bahut bahut dhanyawad. Jai Shri Ram.
Jai Shri Ram.
Good to see you, Vinamra.
Always happy to see you as well. Aapki kitabon ne, aapki pustakon ne mere jeevan ke andar ek bahut ahem किरदार निभाया है और ये मेरी हिंदी का अंत है। यहाँ से हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट कुछ कॉन्वर्सेशन करी, सबसे पहले हमने महाभारत अनरैवल के ऊपर बात करी थी, द वाइट बुक, राइट? देन वी स्पोक अबाउट रामायण अनरैवल और वो किताब पर्टिकुलरली, उसका जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, कुछ उसके शॉर्ट्स हैं जिसके अंदर मिथ्स डिबंक किए गए, वो बहुत वायरल चली गई। एंड उसके बाद जिस प्रकार की आपने सक्सेस को पाया और जितने लोगों ने रामायण और महाभारत की स्टोरीज पे फ्रॉम अ स्कोलास्टिक लेंस एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स दैट एनीवन फ्रॉम जेन जी टू जेन एक्स कैन अंडरस्टैंड, दैट हैपेंड एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय लाइफ आई नो हैज आइदर वॉच्ड दोस पॉडकास्ट, वॉच योर अपीयरेंसेस और रेड द बुक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑल योर अमेजिंग सक्सेस।
बहुत बहुत आभार। आई हैव टू टेल यू दिस विनम्र, वो जो रील वायरल हुई थी हनुमान जी की गदा वाली, As you know, you messaged me, पता है कि please आप tension मत लेना, क्योंकि बहुत सारी गालियाँ उस पे आती।
12 million views.
हाँ, but गालियाँ भी बहुत आई, इसके कारण वो viral भी हुआ। पर एक चीज बहुत अच्छी हुई उसके बाद, because लोग कहते, बहुत लोगों ने ये कहा कि ये कैसे ऐसे बोल रही है, who is she to say कि हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, ये नहीं थी। Now we know what we were not saying, थी कि नहीं थी, हमने कहा था वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने, to their credit, they went and checked कि या क्या बोल रही है। दे रीच्ड आउट टू स्कॉलर्स एंड दे चेक, एंड जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है वो तो जानते हैं कि उसमें उल्लेख नहीं है। बात तो उतनी है, आप आज हनुमान जी को पूजना छोड़ दो विदाउट गदा, ऐसी तो बात वैसे भी हम नहीं कह रहे थे, क्योंकि श्रद्धा की बात अपनी जगह होती है, इतिहास की जगह अपनी बात अपनी जगह होती है। तो उससे ना कहीं लोगों को विश्वास भी आया कि नहीं, ये बोल रही है, ये विदाउट बैकअप नहीं बोल रही है।
फिर उसके बाद विल गो टू द बुक, ठीक है। सो एक पॉपुलर मिथ ये है, अभी हम पीछे नीचे कैफे में बैठ के बात कर रहे थे, कि शकुनी महाभारत के अंदर लंगड़े होते हैं, इज दैट ट्रू?
नो, शकुनी का कोई भी लंगर ना लिंपिंग वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं है. मुझे किसी ने बताया कि वो किसी रीजनल स्टोरी फोकलोर में है, परंतु हम जो टीवी में देखते हैं ना, वो टीवी की तो एक कथा है कि गुफी पैंथल जी को लगा, गुफी पैंथल जी को कुछ लगा था, एंड दिस इज इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, और आई थिंक नीतीश भारद्वाज जी का कोई इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया कि लिंपिंग क्यों ऐड करी गई, क्योंकि उनको लगा था, तो उनको पैर में लगा था एंड वो वैसे ही लिंप कर रहे थे. तो उस समय जो डायरेक्टर थे उन सब ने देखा और कहा यार ये तो जा रहा है उनके कैरेक्टर के साथ.
एक्टर से वो फिर मिसकंस्ट्रू हो गया, एक्टर के बिहेवियर से मिसकंस्ट्रू हो गया इसलिए एक्टर.
क्रिएटिव इमेजिनेटिव लिबर्टी जो उन्होंने लिया उससे सबको लगा कि उनका लंगड़ना है ना. वहां तक तो ठीक है, ठीक है आप किसी कैरेक्टर को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ये दिखाते हो, पर उसके बाद अब क्या हुआ है कि उसके आजू बाजू में और कहानियां जुड़ गई है कि वो कैसे लंगड़े हो गए. दैट्स द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट. एंड देन वहां पे गांधारी को मांगलिक बता दिया गया है और उनकी शादी वो बकरे के साथ कर दी गई थी. एंड देन दे से कि अच्छा, क्योंकि और ये बात भीष्म पितामह को बताई नहीं गई, इसलिए भीष्म पितामह ने बदला लेने के लिए शकुनी उनके पिताजी और सारे भाइयों को कैप्चर कर लिया और उनके साथ बहुत अत्याचार किया, जो इसके लिए फिर शकुनी ने एक नाइफ से, एक छुरे से अपने पैर में लगा दिया और वो लंगड़े कर दिया अपने आप को, ताकि वो कभी ना भूले उनके साथ क्या अन्याय हुआ था. एंड देन ही मेड दिस होल महाभारत हैपन. नाउ द पॉइंट इज, अगर ऐसा हुआ था और भीष्म जो हैं वो इतने अत्याचारी थे फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, राइट, तो उसे एक तो ये चीज है, तो फिर शकुनी ने जो किया वो उसके लिए धर्म युद्ध बराबर था, है ना. फिर हम जो बाकी सब बात करते हैं कृष्ण ये वो तो बकवास है, क्योंकि ये शकुनी का युद्ध हो गया. जबकि ऐसा वेदव्यास जी के महाभारत में कुछ भी नहीं है. ये पूरी कथा वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं है, ये मनगढ़ंत कथा है जो क्लिकबेट के लिए पता नहीं कहां से आ गई है. मैंने ये भी सुना कि कोई जो फिक्शन राइटर है, फिक्शन तो महाभारत में बहुत लिखी जाती है, उन्होंने कहीं तो इस कथा को लिखा है और फिर उसी को अब बहुत बड़ा वायरल कर दिया गया है. बट ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है कि द्रौपदी, ये गांधारी मांगलिक थी और उनके परिवार को कैप्चर कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है महाभारत में. तो इनफैक्ट ऐसा आता है कि जब भीष्म अपने भाइयों के लिए, स्टेप ब्रदर्स के लिए अच्छी सुशील कन्याएं जब देख रहे थे, तो पांडु के लिए कुंती का तो खैर स्वयंवर था, तो कुंती का स्वयंवर होना था, तो वहां पांडु को भेजा. और गांधारी के विषय में उन्होंने सुना था कि एक बहुत सुशील कन्या है गांधार देश के राजा की, जिसका नाम है सुबल. तो सुबल के पास वो जाते हैं प्रस्ताव लेकर विवाह का, और विवाह के प्रस्ताव में उनसे कुछ छुपाया भी नहीं गया. वो बताते हैं कि मेरा धृतराष्ट्र जो, और सब जानते ही थे कि वो अंध है, तो पहले सुबल सोचते हैं कि क्या करा जाए. फिर हस्तिनापुर की स्टैंडिंग को देख के, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था, बहुत विशाल राज्य हुआ करता था, तो वो सब देख कर, सोच समझ कर सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है धृतराष्ट्र से करा दिया. कोई जबरदस्ती कुछ नहीं थी, और मांगलिक वाली तो बात भी नहीं थी. इनफैक्ट गांधारी के लिए कहा जाता है, गांधारी और शकुनी दोनों के लिए कहा जाता है अर्थशास्त्र विशारद, दोनों ही फिनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी. दे वर लर्नड इन दैट. तो इस और बाकी बहुत सारे गुण थे गांधारी के जो हमें बताए जाते हैं. तो जब विवाह की बात आ गई और जब गांधारी के माता पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब गांधारी भी मान गई. उन्होंने कहा कि अगर मेरे माता पिता खुश हैं तो मैं भी विवाह कर लूंगी. बट शी सेड कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो मेरे पति नहीं कर सकते, तो अगर मेरे पति नहीं देख पाएंगे तो मैं भी नहीं देखना चाहती. एंड शी टाइड जो अपने आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी. फिर शकुनी स्वयं प्यार से गांधारी को ले जाते हैं हस्तिनापुर और वहां उनका विवाह होता है. इतनी सी कहानी है, और यही इतिहास में जो वेदव्यास जी की महाभारत की कथा है वो यही है, इसमें कुछ भी मसाला नहीं है. अच्छा, उसके बाद शकुनी जो है वो ऑब्वियसली अपने भांजे के प्रति बायस्ड होंगे. ही विल ऑब्वियसली वॉन्ट ऑल द गुड फॉर हिज भांजा, इसीलिए वो जो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको अच्छा, उसका अच्छा हो ऐसा करते हैं. बट ही इज नॉट दिस विकेड एंड कनिंग एज वी आर यूज टू सीइंग हिम, और एज सम ऑफ दी स्टोरीज मेक इट साउंड. इनफैक्ट देर आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस इन महाभारत जहां शकुनी जो है वो उल्टा कह रहे हैं दुर्योधन को इस जो वो गंधर्व युद्ध होता है जब आ, आ, पांडव है वो फॉरेस्ट में होते हैं, वनवास में होते हैं, और तब शकुनी, दुर्योधन, फिर कर्ण, वो सब जाते हैं उनके सामने शो ऑफ करने, और वहां वन वन में उनका जो उनकी मुठभेड़ गंधर्वों से हो जाती है और गंधर्व उनकी ले लेते हैं. ठीक है, कर्ण तो वहां से चला जाता है बिकॉज ही इज वेरी हॉट, सो ही लीव्स द बैटल फील्ड. दुर्योधन इज कैप्चर्ड. तो दुर्योधन को छुड़वाने के लिए उनके सैनिक वहां वन में जो पांडव है उनके पास जाते हैं, और युधिष्ठिर अपने चारों भाई को भेजते हैं. चारों भाई मिलकर इनको छुड़ाते हैं गंधर्वों से युद्ध कर कर. तो ये जब होता है तो ऑब्वियसली दुर्योधन बच तो गया, बट इट इज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर हिम ना, कि जिसको जिनके सामने शो ऑफ करने गया था उनके उन्होंने इसे बचाया. तो ही लाइक, मैं तो अपना जीवन त्याग दूंगा, आमरण अनशन करूंगा. एट दैट पॉइंट इनफैक्ट शकुनी इज टेलिंग हिम कि भाई ऐसा मत कर दे. उन्होंने बड़ा मन दिखाया ना तुम्हारी रक्षा कर कर, नाउ यू बिकम द बिगर मैन, उनका राज्य लौटा दो.
नहीं लौटाया उसने।
उसने कहा मैं तो मर ही जाऊंगा. फिर कर्ण ने आके कहा अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, युद्ध जैसे ही खत्म होता है वनवास में मार दूंगा वगैरह. एंड दैट इज वॉट दुर्योधन वॉन्टेड टू हियर. तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन उनके किसी के बुद्धि से चलता था. दुर्योधन वॉज जस्ट ब्लाइंड विद जेलसी एंड ही हैड द बैकिंग ऑफ ऑल दीज पीपल,
हाँ
सो दैट इज इट. तो कई बार कहा जाता है अरे अगर पांडव हार जाते तो शकुनी वुड हैव बीन द बिगेस्ट स्ट्रेटजिस्ट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.
हाँ
उनका स्ट्रैटेजी भी, युद्ध स्ट्रैटेजी भी जो है वो शकुनी का नहीं है. भीष्म पितामह पहले 10 दिन सेनापति थे, है ना. तो इट्स द सेनापतिज हु डिफाइन द स्ट्रैटेजी.
हाँ
ऑल्सो शकुनी डाइज, ही इज देयर टिल द 16th डे ऑफ द वॉर. दुर्योधन और वो सब उसके उनके बाद मरते हैं. कर्ण जो है वो उनके बाद मरता है. ठीक है, तब तक वो जीवित हैं. और उनके पिताजी के विषय में जो कहा गया है कि उनको पकड़ लिया गया और 99 लोगों को भीष्म ने कैद कर दिया वगैरह वगैरह और मार दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है. राजा सुबल इज अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शकुनी के जो भाई हैं वो भी युद्ध में भाग लेते हैं. तो दिस इज वॉट एक्चुअल महाभारत इज. एंड आई एम ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन. पता है क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में आई स्टार्ट विद शांति पर्व. शांति पर्व इज द डिस्कशन बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर ऑन राजधर्म. कृष्ण कहते हैं भीष्म जो है वो भी गुजर जाएंगे, वो देह त्याग कर देंगे बहुत ही शीघ्र. क्यों? क्योंकि युद्ध हो चुका है. ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज. सो शांति पर्व कम्स आफ्टर द वॉर हैज हैपेंड. तो कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं इनके जितना विद्वान, इनके जितना धर्म को समझने वाला, इनके जैसा योद्धा, इनके जैसा राजतंत्र को समझने वाला इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है.
और ये एक सरप्राइजिंग बात है, बिकॉज टिपिकली हम लोग महाभारत से भीष्म के विजडम को कभी एसोसिएट नहीं करते।
एब्सोल्युटली. पर क्योंकि वैसा था इसीलिए तो शांति पर्व है, जहां पर कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुम जाकर उनसे सीखो कि राजधर्म क्या है. एक मनुष्य को अपना जीवन, एक राजा को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, है ना. तो वो अगर अत्याचारी होते, धर्म को नहीं समझते, अपने विम्स पर लोगों के साथ डील करते तो ऐसा होता क्या? एंड कृष्ण तो पक्के से ऐसा नहीं कहते. सो शांति पर्व का महत्व ही इसलिए है बिकॉज भीष्म का जो व्यक्तित्व है वो इतना महान है.
सो आई वांट टू गो टू युधिष्ठिर नाउ, बिकॉज हम लोग शांति पर्व पे आई गए हैं। किताब का जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही होता है। जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो ये बात करी थी कि जो मेन जहां पे महाभारत टेक प्लेस करती है, गीता भी जहां टेक प्लेस करती है, वहां पे अर्जुन कतरा रहे होते हैं युद्ध करने से, है ना, कि सामने मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ। और वो उसी पैसेज को गीता बनाया गया। यू नो आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फिर मैं इस चीज पे सरप्राइज हूँ कि दोनों पांडव भाई, अब युधिष्ठिर ने तो काम कर दिया ऑलरेडी, युद्ध हो चुका है, तहस नहस हो चुके हैं, अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो जो है अब जंगल में जाऊंगा, मेरे से तो राज नहीं संभाला जाएगा। नंबर वन, वाई आर द पांडव ब्रदर्स ऑलवेज सो इनकंसोलेबल, राइट? नंबर टू, कि ये फिर कृष्ण की सूझबूझ करके बोलना कि नहीं अब आपको संभालना है और भीष्म के पास जाओ। व्हाई इज युधिष्ठिर फीलिंग दिस रिग्रेट नाउ? क्योंकि आपने युद्ध के ऊपर तो प्रिसाइड कर लिया, आपने तब तो आप आराम से खेल रहे थे। एक बहुत बड़ी विन शेयर करनी यार। एक कौस्तुभ सनाद्य नाम का इंसान है, ही परचेज थ्रू पॉडकास्ट टूल्स। आई एम गोना रीड आउट हिज मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। भाई, अंडरस्टैंड यू आर बिजी, डोंट इवन नो इफ यू और एनीवन इन योर टीम फॉर दैट मैटर इवन चेक्स द डीएम्स, पर मैंने आपका कोर्स लेके पूरी शिद्दत से स्टडी और रिसर्च करी है। आई बीन शूटिंग एपिसोड फॉर लास्ट 15 डेज, दिल बी रिलीज नेक्स्ट वीक एवरीथिंग गोज इज प्लान। आई होप यू सी दिस मैसेजेस, आई विल मेक यू प्राउड फॉर श्योर। पॉडकास्ट का नाम भी बता रखा है, एंड इन द एंड ही सेज आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर एवरीथिंग आई गॉट टू लर्न बिकॉज ऑफ यू। Hope you'll be a guest on our podcast someday. Thank you so much, Kaustub. This means the world to me. ऐसे हजारों और लोग हैं जिन्होंने प्रो पॉडकास्टर टूल्स क्योंकि इतना अफोर्डेबल बनाया यार. मैंने 0 से 8 लाख तक पॉडकास्ट को स्केल करा. आसान काम नहीं होता, ऐसे ही कर देना पॉडकास्ट को स्केल. मैंने जो कुछ सीखा ना, मैंने उसको लगाया कि सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट करे वो हमारा वो इंसान बेनिफिट करे जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का. बिकॉज यू आर गोना बी द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग इन द कंट्री. नॉट पीपल लाइक मी, नॉट पीपल हु आर ओल्डर. यू आर द पीपल हु आर पिकिंग अप दीज स्किल्स नाउ. यू नो हाउ AI वर्क्स, यू नो हाउ लेवरेज वर्क्स. यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन नेटवर्क वेरी वेल इफ यू हैव द राइट टूल्स. तो मैंने इन सब लोगों के लिए प्रो पॉडकास्टर टूल्स बनाए हैं, राइट. एंड आई वांट टू से, अगर आप एक हायरार्की में अपने आप को पाते हो, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपका बिजनेस है, इफ़ यू वर्क इन अ बिग कंपनी और इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, यू विल फाइंड दैट यू आर समवेयर इन द मिडल और एट द बॉटम और एट द टॉप. आपको पता लग जाता है इंस्टेंटली आपकी कौन सी पोजीशन है. द थिंग दैट मूव्स यू फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, फ्रॉम द मिडल टू द टॉप और इंश्योर्स कि आपका टॉप और टॉप पे हुए, इज सिंपली व्हाट काइंड ऑफ लेवरेज यू हैव. आई फाउंड दैट आई एम इन्वेस्टेड इन मल्टीपल हायरार्कीज और हर हायरार्की के अंदर ना जो चीज़ मेरे को टॉप पे लेके जाती है वो ये होता है कि मेरा लेवरेज ये है कि मेरे पास एक बड़ा पॉडकास्ट है जिसपे लोग आना चाहते हैं. अब आपका पॉडकास्ट जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, जरूरी नहीं है उस पर मिलियन व्यूज आए, लेकिन उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जिसके अंदर आप एम्बेडेड हो, आपकी कॉलेज की सोसाइटी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका स्टार्टअप हो सकता है, वहां पे इफ यू कैन लैच योरसेल्फ इन एंड बिल्ड अ पॉडकास्ट अराउंड दैट एंड प्लेस योरसेल्फ एज द पर्सन हु ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, आपका स्टेटस बढ़ता है. स्टेटस बढ़ने के बाद क्या होता है, आपको करियर की और सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप ज़्यादा पैसे कमांड कर सकते हो अपनी जॉब पे. देर आर न्यूमरस वेज इन विच अ जूनियर डेवलपर और एन एसोसिएट इंजीनियर और समवन हुज़ जस्ट अ कंटेंट इंटर्न इन अ कंपनी कैन स्केल देयर नेटवर्थ, देयर नेट फेम एंड द नेट वैल्यू दे गिव टू एवरीवन अराउंड देम सिंपली बाय हैविंग अ पॉडकास्ट. उस पॉडकास्ट पे आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओ. आपको उसको फेमस नहीं करना है, आपको बस अपने पॉडकास्ट को ऐसे करना है कि वो आप उस इंडस्ट्री को कॉन्कर कर लो. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन पुट देयर हार्ट एंड माइंड टू इट. यूज प्रो पॉडकास्टर टूल्स, 70+ PDFs एंड रिसोर्सेज, नो नॉनसेंस है भाई. एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, आउटरीच, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन, रिसर्च, सब कुछ कवर करा है, कुछ नहीं छोड़ा है. आपको प्लग एंड प्ले करना है एंड देन जस्ट सी हाउ योर लाइफ ट्रांसफॉर्म्स. यू विल बी सो सरप्राइज्ड दैट यू विल हैव मोर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, यू विल हैव मोर फेम देन यू एवर ड्रीम्ड एंड यू विल सिंगल हैंडली सी हाउ यू स्केल फ्रॉम अ नोबडी ऑन द हायरार्की राइट टू द टॉप. यू नो व्हाट टू डू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रो पॉडकास्टर टूल्स. आई हैव मेड इट अफोर्डेबल सो ऑल ऑफ यू can benefit from something that is only reserved for the chosen few, right? I want to remove the elitism from podcasting and this is my gift to all of you. Let me know what you think about it. Aap isko lo aur mere ko batao wo kaisa laga and we'll speak together. And I'm very excited to help you start your own podcasting journey today.
आप अगर युद्ध कैसे हुआ वो भी देखोगे तो ऐसा नहीं था कि पांडवों को युद्ध चाहिए था.
वो तो मैं मान गया. हाँ,
हमने जो पहले इसमें भी देखा है महाभारत अनरावल्ड 1 में कि उन्होंने हर प्रयत्न करा जिससे कि युद्ध ना हो.
Correct.
है ना. इनफैक्ट एक वहां प्रसंग आता है कि बाकी 4 पांडव तो ठीक है पर भीम के बारे में हम सोचते हैं कि भीम तो ज्यादा रैश है, he was always wanting a war. वो भी कहते हैं युधिष्ठिर से कि पहले जो आप शांति का ही प्रयत्न कीजिए, उसके लिए हम जितना नेगोशिएट कर सके करिए. वो भीम भी कह रहे हैं, बाकी सारे भाई तो कह ही रहे हैं. दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि हमको केवल 5 गांव दे दो और कुछ मत दो, केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि युद्ध जो है ना वो विनाशकारी होता है. आप अपना हमारा कोई भी शास्त्र उठा लो, फिर इसमें महाभारत आ गया, फिर उसमें कोई धर्मशास्त्र आ गया, फिर उसमें अर्थशास्त्र आ गया, उस सब में ये बात है कि यादव जो राजा है उसे युद्ध से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए. पर युद्ध इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट, इट इज नेवर द फर्स्ट रिजॉर्ट. इट कैन नेवर बी दैट एक इम्पल्स में आके आप युद्ध कर लो, एटलीस्ट एक जो अच्छा राजा है. क्योंकि युद्ध में ना जितनी माल हानि जान हानि होती है, एक तो वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और दोनों साइड होती है. ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान हो गया अपना कुछ नहीं होगा. अब अगर महाभारत ही देखो तो युधिष्ठिर जो पांडव है, चलो 5 भाई तो जीवित थे पर उनके सारे बच्चे मर गए ना, सारे बच्चे वीरगति को प्राप्त हो गए. फिर वो घटोत्कच ले लो, अभिमन्यु ले लो, द्रौपदी के सारे पुत्र ले लो, या उलूपी का पुत्र जो अर्जुन के द्वारा था, इरावन ले लो, सभी के सभी तो गुजर गए. सेकंड पीढ़ी तो बची गई थी, तो नुकसान तो इनको भी हुआ, प्लस जो युद्ध था वो क्यों, इस केस में तो वो युद्ध क्यों अवॉइड करना चाह रहे थे, क्योंकि सामने की ओर उनको पता है कि अपने ही लोग हैं, इसीलिए दे वर ट्राइंग टू सेटल जस्ट फॉर 5 गांव्स. बट व्हेन दुर्योधन सेज कि भाई मैं आपके साथ लड़ ही नहीं, मैं आपके साथ जीत ही नहीं सकता, इट इज ईदर यू और आई, देन हाउ लॉन्ग कैन यू टॉलरेट इनजस्टिस, हाउ लॉन्ग कैन यू अलाउ द बुली टू हैव हिज वे, बिकॉज इफ द बुली हैज हिज वे द सोसाइटी इज गोइंग टू कोलैप्स, दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय, एनआरकी जैसा हो जाएगा ना कि बिग फिश ईट स्मॉल फिश, वो लॉ ऑफ द जंगल जैसा,
राइट,
ऐसी सोसाइटी तो रह नहीं सकती. फिर एक राजा का कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना हो, यू सेट द राइट प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी, हेंस दे अग्रीड फॉर द वॉर. बट ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर वाज आल्सो डाइंग फॉर द वॉर, ऐसा नहीं था, ही आल्सो वांटेड टू अवॉइड इट. सो व्हाट वी एक्चुअली सी हियर इज दैट दीज पीपल जो पांडव थे उनमें एक्चुअली मनुष्य के गुण थे, वो अगर युद्ध भी कर रहे थे तो अपने मद मात्सर्य अहंकार के लिए नहीं कर रहे थे, बट बिकॉज इट वॉज इम्पोज्ड ऑन देम, तभी आप पीछे नहीं हट सकते, इसलिए कर रहे थे. और जब आपका युद्ध हो गया है ना, और युद्ध में कौन, आपके बच्चे सारे मर गए हैं, आपके दादाजी हैं, गुरु हैं, वो सब को आप ही के द्वारा, आप ही के हाथ मारे गए, तो इट इज अ शॉक यार, स्पेशली फॉर समबडी हु जेन्युइनली केयर्स, हु जेन्युइनली हैज दैट कंपैशन एंड एम्पैथी, राइट, उसको तो बुरा लगना ही है, सो ऑब्वियसली युधिष्ठिर इज फीलिंग बैड.
सो जब उन्हें कंसोल करते हैं, सरप्राइजिंग बात एक ये भी थी कि आपकी पूरी जिंदगी भीष्म पितामह अवेलेबल थे, तब आप पूछ लेते राजधर्म उनसे, ऐसा ही क्यों प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन ही इज डाइंग आप उनसे जाके वो मांग रहे हो कि राजधर्म मेरे को सिखाओ. फिर भीष्म पितामह अच्छी तरह पता है कि यार उनके परिवार का भी नाश हुआ है, देन ही सेज जस्ट लाइक इट्स अ टीचर्स धर्म टू टीच एंड एंगेज इन ऑस्टेरिटीज, इट इज अ वॉरियर्स धर्म टू किल हिज ओपोनेंट्स एंड फेस विद द वॉर, it is indeed dharma to kill in a war anyone in the opposing camp, be it a father, grandfather, brother, cousin, teacher or elder, whoever walks on the path of unrighteousness. Like ab ye hum ye wali cheez padhte hain to even in his death he is saying aapka war justified tha.
Ha dekho bhishma pitama jo hai wo jante the ki who is right, theek hai, par
would you say his hand was forced?
His position, अब उनकी position देखो, एक ओर पे लोग ये कहते हैं कि ऐसे कैसे उन्होंने क्यों दुर्योधन का साथ दिया, ठीक है, पर आप उनकी position देखो ना, तो ये धर्म संकट समझ सकते हैं, basically it's a धर्म संकट ना, कि जिसका आपने नमक खाया है, so the way I look at it, right? जैसे अर्जुन को धर्म संकट था कि भाई मैं कुटुंब धर्म की रक्षा करूं और युद्ध ना करूं, या क्षत्रिय धर्म की रक्षा करूं और जस्टिस एस्टैब्लिश करूं, दिस वॉज अ धर्म संकट. Anywhere he could have gone. भीष्म के लिए क्या था? Again, कुटुंब धर्म तो था ही कि अपने कुटुंब की रक्षा करो, बट दूसरा उनका सेवक धर्म भी था, और at least how he saw it towards हस्तिनापुर, right? जो भी उनको position थी, जो भी उनको status था, जो भी कुछ था, वो हस्तिनापुर के कारण था, and he was the सेनापति of हस्तिनापुर, right? So what was his option? Either he could have said, मैं सामने की ओर चला जाता हूँ. Now what would that be? राइट, आप ऑपोजिंग हस्तिनापुर के तो शत्रु ही हो गए ना वो एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ जस्टिफाइड शत्रु,
सेडिशनिस्ट हो गए एक तरह से.
आप ये देखो कि आज अगर युद्ध होता है अपना और किसी और देश का, एंड से दे हैव द राइट कॉज, वुड वी, व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट आवर जनरल्स एंड आवर आर्मी टू डू?
टू स्टिल बी विद
द अदर साइड?
नो, बट दे विल बी कॉल्ड ट्रेटर्स.
करेक्ट. सो देन इफ योर मास्टर, इफ योर पॉलिटिकल अथॉरिटी हैज टेकन अ कॉल, the army has to follow na, including your general, even if they know ki samne ki side wale sahi hai. So this is also right. Now the question is, could he have stood up beyond that dharma and said, nothing doing, I will still stand for my kutumba and for what is right? It's easy for us to talk about that in hindsight, right? Aap sochiye aisa aur ek jan ne kiya hua hai history mein, ki dharma ka saath dene ke liye apne side ko chhod diya.
विभीषण, या
विभीषण के लिए रामायण में बात आती है, परम आपद गतस्य अपि धर्मे में मतिर्भव. तो जब उनको जो तीनों भाई हैं विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, उनको जब ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं उनकी तपस्या के बाद, तो विभीषण कहते हैं कि कोई भी आपदा आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा आए, कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आए, मेरा मन जो है वो हमेशा धर्म की ओर हो. और ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा किया भी. पर आज इन पॉपुलर कल्चर हम विभीषण को कैसे याद करते हैं?
ट्रेटर।
हम क्या कहते हैं?
घर का भेदी लंका ढाए।
है ना,
लोग स्टाइल मारने के लिए कह देते हैं, मुहावरे बनाने के लिए।
फिर भी मेन मान्यता तो ये है ना कि देखो कोई ऐसा ट्रेटर विभीषण है ना, although he stood by dharma, तो in fact that image of his is not right, but he stood by dharma.
We should start a campaign for Vibhishan.
तो ये तो होता है, तो इसलिए हमारे लिए कहना सुलभ है कि भाई ऐसा कर देते वैसा कर देते, but when you are in that position, धर्म संकट के position में बहुत कठिन है ऐसा करना। अभी और प्रश्न इस पहले क्यों नहीं पूछा? अच्छा पहले आई एम श्योर इनकी बातें तो होती होगी, जब युधिष्ठिर युवराज था या उसके बाद जब इंद्रप्रस्थ का राजा हो गया तब ये बातें तो होती होगी, बट दिस इज द पॉइंट जिसके बाद ही इज नेवर गोइंग टू बी अवेलेबल। पहले तो ऐसे था ना कि कोई भी बात हो तो ही वॉज एक्सेसिबल, अब तो ही वॉज नॉट गोइंग टू बी एक्सेसिबल। तो लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम वट एवर ही हैज टू टेल यू, बिकॉज भीष्म की दूसरी एक बात क्या थी, आप उनका जीवन देखिए, ही वॉज नेवर द राजा, बट ही वॉज ऑलवेज द वन हु डिड द हु हैड टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ अ राजा।
एडमिनिस्ट्रेटर
कैसे, क्योंकि उनके पिताजी जब थे और इनको युवराज बना दिया गया था है ना, फिर पिताजी को सत्यवती से प्रेम हो गया और सत्यवती की जब उनसे शादी होनी थी तो सत्यवती के जो पिता है दासराज, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा, अगर ये आपको मान्य हो तो ही मैं विवाह करता हूँ। एंड भीष्म पितामह वो फिर प्रतिज्ञा लेते हैं ना, उनका नाम देवव्रत होता है, बट क्योंकि वो इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और जो भी राजा बनेगा उसकी सेवा करूंगा है ना, मैं कभी क्लेम स्टेक नहीं करूंगा इस राजा इस पर, तो वो तो उन्होंने तब कह दिया। बट फिर हुआ क्या, वो बच्चे तो छोटे छोटे थे पहले, जब उनके पिताजी शंतनु गुजर गए तभी बच्चे छोटे छोटे थे, तो कारभार वही संभाल रहे थे। फिर जो चित्रांगद नामक भाई बड़ा हुआ पर वो राजा बने उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर विचित्र वीर्य कुछ वर्ष राजा रहा बट बहुत यंग था, तो केयर टेकर तो भीष्म ही थे, फिर वो भी मर गया। उसके बाद ये बच्चे तो थे ही नहीं, फिर धृतराष्ट्र पांडु और विदुर का जन्म हुआ, वो बड़े हुए तब तक तो राजभार जो था भीष्म के ही हाथों में था, फिर फाइनली पांडु राजा बना, फिर पांडु राजा बना वो भी कुछ टाइम में गुजर गया, फिर धृतराष्ट्र को राजा बनाया, तभी of course then Vidur had taken over a lot of karyabhar and responsibilities definitely, par phir bhi suggestions ideas ye to Bhishma ke dwara hi tha na, to ek to gyan hona jo unko tha, he was an extremely learned person, unhone bahut sare alag alag guruon se shiksha prapt ki thi, par jo real life anubhav jo hai na on ground anubhav of administration वो उनके जितना किसी को भी नहीं था, बिकॉज प्रोबेबली ही वॉज द वन हू हैड डन इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवन दो ही वॉज नेवर रियली द राजा, तो वो अनुभव भी उनको था कि हाउ डू यू मैनेज एंड टेक डिसीजंस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस जो शास्त्र में हो और ना हो। एंड दैट इज वाई शांति पर्व इज सच अ रिच पार्ट ऑफ महाभारत वेयर दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन, देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, मैंने केवल राजधर्म को ज्यादा कवर किया है और आपद धर्म को ज्यादा कवर किया है, बट बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं।
चलिए राजधर्म की बात करते हैं, क्योंकि एक तो आपका बैकग्राउंड भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर है, ठीक है, तो अभी क्या होता है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ टाई टुगेदर विद, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, वो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी किताबें पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प की, हाउ टू बी अ बेटर लीडर, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की बहुत सारी किताबें आती हैं। मेरे को सबसे फैसिनेटिंग राजधर्म इसलिए लगा बिकॉज इन सब किताबों में ना ऐसी जो दूसरी किताबें होती हैं अक्सर ऐसा लिखा होता है कि बी एन एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर या मैनेज योर ओन सेल्फ, इट हैज अ लॉट टू डू विद लाइक वेरी सुपरफिशियल स्टफ, बट रेयरली अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्टेट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ किंग। बिकॉज हम ऐसे जमाने में हैं जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है बोलना कि मेरा ये राजधर्म है, राइट? अगर आप किसी स्टार्टअप के ओनर हो आप नहीं बोल सकते मेरा ये राजधर्म है, बिकॉज यू आर सपोज टू बी इन अ फ्लैट हायरार्की और लाइक हैव लेस हायरार्की, राइट? एंड एवरीवन वर्क्स इन लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टीम्स। बट आई स्वेयर अगर कोई लीडर इसको पढ़ेगा ना इंस्टेंटली उन्हें क्लियर हो जाएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और राजधर्म के भी इतने सारे टेनेट्स हैं कि उसको निभाते निभाते इंसान एकदम पवित्र हो जाएगा। बिकॉज व्हाट आई फाउंड इज कि द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ किंग, राजधर्म दिमाना इतना कठिन है, इतनी सारी चीजें हैं। हम टिपिकली क्या सोचते हैं इंडिया के अंदर, एक बिजनेस ओनर जिसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और वो अपना आराम से ऐसे बैठा हुआ। लेकिन आपने लिखा है राजधर्म के अंदर कि आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग यू नेवर एसोसिएट विद किंग्स। किंग्स आर ऑलवेज नोन फॉर देयर बैटल विक्ट्रीज, किंग्स आर नोन फॉर देयर प्लेजर्स, किंग्स आर नोन फॉर देयर नेम एंड लेगेसी, बट नेवर देयर हार्डवर्क।
Viram, I'm so happy you saw that lens. I really hope people would. That is the purpose of writing this book, very, very honestly. Because people will say that today the Rajdharm is not our king. But the wisdom in the text is राजा को उद्देश्य करके है, ठीक है, कि राजा को बताई गई है, बट द प्रिंसिपल्स एंड द विजडम इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस इन आवर लाइव्स, राइट? बिकॉज इट बॉयज डाउन टू लीडरशिप लेसंस। आज हम इतनी सारी लीडरशिप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हैं, एज यू वेरी राइटली सेड, दे आर वेरी सुपरफिशियल। दिस गोज टू द कोर ऑफ इट कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट पीपल टू टेक आउट ऑफ दिस बुक। सो आई एम सो ग्लैड यू एक्चुअली पिक्ड इट, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू एनफोर्स इट। मुझे इसको एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बनाना था, ठीक है, बिकॉज उसमें कैसे होता है टू फोर्स फिट फ्रेमवर्क्स, कुछ कुछ चीजें
आपको लीडरशिप
करनी पड़ती है,
10 लीडरशिप लेसंस फ्रॉम महाभारत फॉर मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स, यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट।
आई डिडंट वांट टू डू इट लाइक दैट बिकॉज अगेन दोस वुड बी माय टेकअवेज। इफ समबडी रीड्स इट दे माइट फाइंड सम 12 13 14 एज वेल, राइट? एंड आई हैव ऑलरेडी लिमिटेड इट बाय सेइंग इतना ही है,
राइट? सो लेट मी ब्रिंग समथिंग अप। आई थिंक दैट एक कोट था एंड मैं इसको मॉडर्न उससे टाई करूंगा। So, transparent communication and over-communication is generally the norm. But one of the key factors for your fitness to be a king is the king knows how to keep his thoughts and deliberations confidential, has his desires and anger under control, right? Ab aap kisi bhi corporate tender ke paas chale jao, bolte hain ki over-communicate with your team, sabko express karo, sab kuch batao, sabko on. Here you are saying that you should keep yourself, your thoughts private. So, kuch aap uspe...
सो कम्युनिकेशन में ना आपको ये भी देखना है आपका ऑडियंस कौन है। अगर कई बार आप हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लोगों को देते हो, इट कुड एक्चुअली इट कुड स्केयर पीपल। इवन इन कंपनीज फॉर व्हाट एवर द न्यू एज गुरुस से, डू पीपल रियली कम्युनिकेट एवरीथिंग दे शुड? इफ दे स्टार्ट डूइंग दैट, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली इशूज लाइक कॉस्ट कटिंग, या issues like you know you're going to trim your workforce. कैसे पता चलता है लोगों को जब पिंक स्लिप हाथ में आती है? पता थोड़ी होता है, बिकॉज अगर ऐसा ना हो तो हो हल्ला हो जाएगा, राइट? या इवन इफ इट इज अबाउट सम प्रोडक्ट लॉन्च, वो बहुत शांति से होता है, बहुत चुपके से होता है।
बिल्डिंग इन पब्लिक वाले तो बहुत परेशान हो गए होंगे देख के, जो ओपनली अनाउंस करते हैं हम 6 महीने में लॉन्च करने वाले।
वैसा लोग तभी करते हैं when एक तो जो अनाउंस कर देते हैं ऐसे विदाउट सोचे समझे, जस्ट फॉर द हेक ऑफ कम्युनिकेटिंग, दे फेल मोर ऑफन देन नॉट। क्यों? क्योंकि यू हैव टोल्ड योर कंपेटिटर्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वही आपने छोड़ दिया है एट दैट पॉइंट। इसीलिए अ स्मार्ट पर्सन वुड अनाउंस इट व्हेन ही नोज द प्रोडक्ट इज रेडी, नॉट बिफोर दैट। एंड इवन दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स इज नॉट ओपनली अवेलेबल, राइट? वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को पता होती है, even within the organization. That is exactly what Bhishma is saying, or for that matter any rishi of ours, this is what they say. aisa raja kai log kaise hota na ki ek nayi baat aayi hai jhaadne ka bahut hi hota hai ki ye bata do wo bata do, bol bol bahut sara bol do, aisa nahi ho sakta. kyunki jab raja ya ek leader bolta hai na to har ek shabd ka mahatva hota hai. agar wrong communication ho gaya to uska jo repercussions hai वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए द एडवाइस इन आवर शास्त्र इज ऑलवेज दिस कि बी अप्रोचेबल। राजा को अप्रोचेबल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ओनली देन ही विल नो कि चल क्या रहा है समाज में, है ना? एंड ऑल टाइप्स ऑफ ओपिनियन व्यूज फैक्ट्स विल कम टू हिम। इफ ही इज नॉट अप्रोचेबल तो वो नहीं होगा, आपके जो फ्लैटरर्स है वो ही आपको बढ़ाते चढ़ाते जाएंगे और आपके नीचे से वो चादर खिसक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चटाई खिसक जाएगी, राइट? तो यू हैव टू बी अप्रोचेबल, but not so much that people start taking you for granted, hai na? to aapko aapke position ka prestige bhi maintain karna hai aur jo aisi information hai wo sab wo confidentially rakhni hai. jab sab kuch ho jaye then you know ki if things are working out, that's when you start communicating.
i think
such a deep thought that is.
i think agar hum sab log apne aap ko wo allow kare us tarah ki grace ki hum ek raja hai ek rani hai ya hum ek court ke sadasya hai, तो जिस प्रकार से हम अपने दुनिया में मूव्स करेंगे वो बहुत अलग होंगे। हम अपने आप को फॉलेबल ह्यूमन की तरह देखते हैं बहुत ज़्यादा, एंड वी एक्सेप्ट आर मिस्टेक्स एज अ पार्ट ऑफ बींग ह्यूमन, बट आई डोंट थिंक अ किंग इज एक्सक्यूज्ड।
इट कैन नॉट बी ना, बिकॉज फॉर अ किंग हिज डिसीजंस हैव इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन हिमसेल्फ, हिज डिसीजंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल हु आर एसोसिएटेड विद हिम, ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट। आप ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर लो, एक जो से जूनियर एम्प्लॉई है जो ज्वाइन कर रहा है वो इधर उधर कुछ भी कर दे, एक दिन आए नहीं, बोले कि नहीं नहीं मेरे पेट में दुख रहा है मैं घर पे बैठूं, और किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर अंबानी जो है वो ऐसे बैठ के अपने मीटिंग्स कैंसिल कर दे तो क्या होगा, 10 लाख लोगों की रोजी रोटी इम्पैक्ट हो जाएगी, राइट। सो आपका क्या पोजिशन है उस हिसाब से आपका कर्तव्य बढ़ता ही बढ़ता है। एंड इसीलिए आप जब उस पोजिशन पे हो जहां पर आप प्रजा आपके हर निर्णय से इम्पैक्ट होने वाली है, तभी आपको सबसे पहले अपना प्रजा का ही देखना है। इसलिए राजा जो शब्द है ना वो आता ही इस वर्ड से, रंज रंजनम लोक रंजनम, लोक रंजन मतलब आपकी प्रजा की डिलाइट, वेलफेयर ऑफ योर प्रजा, एंड दैट इज द टॉप मोस्ट कर्तव्य धर्म ऑफ ऑल द राजास, लोक रंजनम रंजयति इति राजा, बिकॉज ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द वेलफेयर एंड द डिलाइट ऑफ हिज पीपल, ही इज कॉल्ड द राजा। एंड राजधर्म इज बेसिकली दैट। इनफैक्ट हमने जब रामायण की बात करी थी तभी भी हमने ये देखा था, जो पहला राजधर्म का लेसन श्री राम को विश्वामित्र जी देते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दृशसम अदृशसम व प्रजा रक्षण कारणात् पातकम सदोषम व कर्तव्यम रक्षताम सदा, राज्य भार नियुक्तानाम एषः धर्म सदा सनातनः। राज्यभार जो राजभार राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभालते हैं, उनका सनातन धर्म क्या है, उनका राजधर्म क्या है, कोई भी कार्य अच्छा है बुरा है, मेरे को पाप मिलेगा मेरे को पुण्य मिलेगा, मुझे खुशी होगी मुझे दुख होगा, नहीं, दैट के नॉट बी। अगर प्रजा रक्षण के लिए है, अगर लोगों के अच्छे के लिए है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, वेलफेयर के लिए है, इवन इफ इट मीन्स पर्सनल लॉस यू हैव टू डू इट, दैट इज राजधर्म। प्रजा सर्वोपरि, द वेलफेयर द बेनिफिट ऑफ द प्रजा इज सर्वोपरि, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड दैट ट्रस्ट इन यू, इट इज दैट ट्रस्ट विच अलाउज यू टू टेक। जो न्याय हम जस्टिस की बात करते हैं कि अगर राजा ने कहा तो लोग मानते थे कि दिस इज जस्टिस, राइट, वो ट्रस्ट उन्होंने आप में इंस्टिल किया है, तो वो कैसे होगा जब आप इतना प्रजा को विश्वास दिला पाओ कि हाँ मेरा जो सारा फोकस है वो केवल आप पर है और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ केवल आपके लिए कर रहा हूँ, तभी तो प्रजा भी ट्रस्ट करेगी ना। सो बीइंग अ लीडर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन। इट कैन नॉट बी मेरा मेरा मेरा, ऐसा नहीं हो सकता, यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन।
आई थिंक अब जब से ओपन फ्लोर ऑफिसेस आए हैं तो देयर इज अ कम्युनिकेशन स्टाइल दैट इज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कैजुअल, फ्रेंडली वर्क स्पेसेस आ गए हैं, राइट। एंड इट्स आल्सो बिकॉज़ बहुत सब लोगों का काम बड़ा क्रिएटिव होता है, राइट, तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑफन डेट्रीमेंटल टू द वर्क इटसेल्फ। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट आई वांट टू ब्रिंग टू थिंग्स अप। एन एवर फॉरगिविंग किंग इज नॉट फियर्ड बाय हिज पीपल, सच एन एटीट्यूड ओनली एनकरेजेस अनराइटियसनेस, नंबर वन। नंबर टू, अ किंग मस्ट ऑलवेज बी पोलाइट इन स्पीच बट नॉट बिकम ओवर फ्रेंडली एंड मेक स्मॉल टॉक विद दोज इन हिज सर्विस, एल्स दे टेक हिम फॉर ग्रांटेड एंड डू नॉट टेक ऑर्डर्स लाइटली and take his orders lightly, right? So we often see ek camaraderie, jaise abhi companies kya kar rahi hain aajkal, culture, jaise aap dekhte ho koi bhi company ka culture bada bahar jata hai, wo apne Instagram post ke through, LinkedIn post ke through, bhai hum company Diwali outing kar rahe hain, hum ye kar rahe hain, wo kar rahe hain, all of that is happening. So I mean it's a product of our times, but this, aur khaas kar iske andar ki aapko ek hamesha hi forgive karne ka consequence kya hai, दंड मतलब इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, और दंड इज नॉट समथिंग दैट वी ऑफन एनफोर्स इन द मॉडर्न एज बिकॉज़ इट्स सीन लाइक पनिशमेंट इज सीन एज अ बैड थिंग,
करेक्ट। इसको ना किस तरीके से देखना होगा
जी?
कि एक तो आप कल्चर आपका कैसे भी करो, ओपन कल्चर करो, बी अप्रोचेबल, ओपन टू फीडबैक, ऑल दैट इज वन थिंग। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू हैव अलाउड अ पर्सन, वेयर यू हैव अलाउड एवरीबॉडी कि आप फ्लेक्सी टाइमिंग से आओ, अपने हिसाब से आओ, ओपन सीटिंग है, सब ठीक है, ऑल दैट इज फाइन। बट अब उसमें बिकॉज यू हैव बीन सो हैप्पी एंड ईजी गोइंग, अगर कोई, एंड यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, अगर कोई क्लाइंट के सामने आपका इंसल्ट कर दे, वन ऑफ योर कलीग्स, अरे तुमको क्या आता है, भले ऑफिस में करता हो, ठीक है, ऑफिस में भी तुमको क्या आता है, तुम्हें क्या समझ है, आई एम टेलिंग यू ना, ऐसे करके बात करे, विल दैट बी अप्रिशिएटेड? यू हैव टू एंश्योर कि देर इज अ रेसिप्रोकेशन, राइट, एंड सर्टन बाउंड्रीज हैव टू बी ड्रॉन. You are allowing them to be your friend does not mean they are at the level of the CCO, right? Jitna information, insight, transparency of information, ya jitna information CEO ke paas hai, wo possibly koi junior ke paas to nahi hai. To jab aisa koi decision lene ki baat aaye client ke samne wagaire, and this junior bacha jaake taang adane lage, then ye to nahi chal sakta. Aap bhale hi uske saath friendly ho, that's one thing. So there are, one is how should the Raja behave? एंड एज इन वन इज एक्सटर्नल बिहेवियर, यस, कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कैसे करते हो, प्यार से करो, ओपनली करो, एवरीबडी शुड हैव द राइट टू कम एंड टॉक टू यू, गिव फीडबैक, ऑल दैट इज फाइन, ठीक है, बट यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज ना, कि वेयर इट स्टॉप्स, बिकॉज नहीं तो अगर एक जन, ठीक है, यू हैव गिवन फ्लेक्सी टाइमिंग्स, पर फ्लेक्सी टाइमिंग्स का अर्थ ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आए ही नहीं या दो ही घंटा काम करे.
Order and discipline must be enforced.
When you have put your trust in your team and the team is not reciprocating or not living up to the trust you have put into them, to you will have to start taking steps na. इसलिए आप देखो कई बार जो बहुत ज्यादा इसमें चले जाता है ना कि सब ऐसा, सब मजा, सब वो, सब फलाना, सब ठिकाना, eventually they go bankrupt.
Yeah, the business collapses.
The business collapses because ऐसा तो हो ही नहीं सकता. You have, every position has its मर्यादा, एंड दैट मर्यादा हैज टू बी मेंटेन्ड. डजंट मीन कि बॉसी कल्चर करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कि भाई मैं राजा हूं, मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, एक शब्द मुझको बोला, इसको इसका गला काट दो, नहीं, दैट कांट.
और यूजुअली हम यही एसोसिएट करते हैं राजा से ना, कि राजा की क्रूरता का कोई वही नहीं है, मतलब लेवल ही नहीं है.
तो इनफैक्ट ही सेइंग ना कि ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज कीप अ वेरी फ्रेंडली डेमिनर विद योर प्रजा, अलाउ देम टू कम टू यू, ये तो लिखा है कि बी अप्रोचेबल to your praja, they should not be scared of you for sure, but they cannot take you for granted.
There should be strong boundaries.
And this has to be true for all leaders. Just because somebody is friendly doesn't mean aap unko apna friend samajh lo. Isme bahut farak hai, theek hai? Aur agar ye sahi se communicate nahi hoga to aisa ho jata hai. Phir ye kaise play out karta hai kabhi kabhi pata hai? आप जब ना हो ना, तब दे थिंक दे कैन स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, ये नहीं हो सकता है, राइट? तो ड्रॉइंग दोस बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हम आज भी रिलेशनशिप्स में भी क्या कहते हैं कि या यू बी वेरी फ्रेंडली एवरीथिंग, बट नो योर बाउंड्रीज. दिस इज एग्जैक्टली दैट, कि बी फ्रेंडली, बी अप्रोचेबल. वो कहते हैं ना कि अपनी प्रजा का ध्यान आप कैसे रखो, तो यू सी द कंसर्न एंड यू सी हाउ दे आर लुकिंग एट प्रजा. दे सेइंग जैसे एक प्रेग्नेंट माँ जो है वो अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखती है, वैसे एक राजा को अपने बच्चों का रखना चाहिए. जो माँ है वो तो अपनी बच्चे से प्रेम से ही बिहेव करती है ना, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने शिशु के लिए, जो अभी तो फीटस है,
नर्चर करती है उसे,
नर्चर तो करती है, बट उसे जो भी अच्छा लगता हो ना वो भी छोड़ देती है. रोज कॉफी पीने की आदत है, बड़ा बोला है कि नहीं, कैफीन इज नॉट गुड, दे लीव इट. वाइन पीते होंगे, बट प्रेग्नेंट है नहीं पियेंगे, 9 महीने दे विल गिव इट अप, राइट? तो दिस इज दैट attitude कि भाई बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, आई विल नॉट डू. द सेम थिंग गोज फॉर राजा. तो आप वैसे बिहेव करो, उनका पालन पोषण सब कुछ करो. सेम गोज फॉर द लीडर. बट बच्चा फिर भी बच्चा है, आप बच्चे के बुद्धि से अपना कार्य नहीं कर सकते, राइट? और वो बच्चे को भी पता होना चाहिए. तो वो आप डिसिप्लिनिंग तो हर इसमें करते हो ना, वो डिसिप्लिन अगर आपके ऑफिस में है, फिर वो ओपन स्पेस है, क्लोज स्पेस है, डजंट मैटर, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट हाँ, यू डोंट बिकम सो बॉसी कि द प्रजा, डोंट बी वेरी क्रूअल ऑल्सो ना. एंड दंड की भी जब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यथार्थ दंड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रिवियल मिस्टेक के लिए आपने बहुत ज्यादा दंड दे दिया, देन दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड. अलाउिंग दैट ह्यूमन स्पेस फॉर ह्यूमन एरर इज इम्पॉर्टेंट.
इसी से आते हैं, चलो ठीक है, अब एक राजा को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, और हम मान सकते हैं कि प्रजा लापरवाह हो गई, प्रजा ने ज्यादा मजे कर लिए, जब कहीं जश्न मन रहा था तो ज्यादा पीखा के उल्टी बातें कर दी, लेकिन राजा ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने इस पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है जो कि हम इंद्र से भी एसोसिएट करते हैं, इंद्रियों से एसोसिएट करते हैं अपनी, कि इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल, राइट? क्योंकि हम सभी के अंदर ऐसी ड्राइव्स होती हैं, वो एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। और हमने ऐसे भी सिचुएशंस देखी हैं हिस्ट्री के अंदर जहाँ कोई पर्टिकुलर राजा, कोई लीडर था जो अपने एंगर या ग्रीड का शिकार होके अपना तो नाश कराया कराया, अपनी प्रजा का भी करा दिया, अपना वंशज खत्म कर दिया और बहुत नुकसान करा दिया। दिस इज वेयर वी एंटर लाइक अ वेरी एसेटिक टेरिटरी, कि जहां पे एक तपस्या हो रही है कि अपने इंद्रियों पे वश करना, क्योंकि आप तो राजा हो, दुनिया भर के प्लेजर्स आपको इतने अवेलेबल हैं, आपको क्या जरूरत है? आप ये बोल सकते हो ना कि भाई आई एम, यू नो, आई इनहेरिटेड द थ्रोन, या मैंने कॉन्कर करा था इसको, तो मैं थोड़ी, मेरा मन करेगा मैं पीऊंगा, मेरा मन करेगा मैं नृत्य देखूंगा, अब मैं लेटूंगा, अब मैं वो फल खाऊंगा जो मेरे को कोई खिलाएगा। Why do I have to go through this penance of controlling my senses?
Again, Raja ka karya kya hai? At the end of the day, Raja ho, koi bhi ho, it boils down to one thing, that is decision making, right? That is what, it is not as if jo Raja hai ya jo leader hai, wo jaake factory mein kaam karta hai. Wo decisions leta hai. Ab, Raja ya leader jo decision leta hai, as we discussed, uska impact jo hai, वो बहुत सारे लोगों पर, सारे स्टेक होल्डर्स पर बढ़ता है, ठीक है? तो अगर वो डिसीजंस वो गलत ले, अगर वो डिसीजन वो ऑब्जेक्टिव बन के नहीं, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो हम कहते हैं कि आउट ऑफ लस्ट, आउट ऑफ इम्पल्स, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एरोगेंस, आउट ऑफ अहंकार ले, और वो निर्णय गलत हो, तो क्या केवल वो अकेला भुगतेगा? इम्पैक्ट तो सभी पे होने वाला है ना? अच्छा, अब राजा को वो स्टेटस मिल रहा है, वो भाव मिल रहा है, वो प्लेजर्स मिल रहा है, वो क्यों है? बिकॉज ही इज द, ही हैज दैट पोजीशन, राइट? तो इफ ही हैज ऑल दोस बेनिफिट्स ऑफ द पोजीशन, ही हैज टू डू व्हाट दैट पोजीशन रिक्वायर्स, दैट इज टेक द राइट डिसीजंस। नाउ हाउ डू यू टेक द राइट डिसीजंस? पता है, आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले लो, कितना ही कोचिंग कर लो, कितना भी ये कर लो, कितना भी वो कर लो, कितने ही पॉडकास्ट देख लो, देयर इज ओनली वन वे of taking the right decisions, by being objective. How do you become objective? Only and only and only by learning to discipline your mind. What does it mean to discipline your mind? It means to discipline and control your senses. We always have sensual pleasures. Choti baat, main hamesha kehti hu ki suppose koi diabetic hai, uske samne laddu rakha hai, theek hai, ab chota decision hai, khao ki na khao, उसे पता है ना उसके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या? ऐसे लगता है छोड़ना यार, फिर हमारा माइंड हर किस्म के रैशनलाइजेशन में, एक ही तो जीवन है, योलो, यू लिव ओनली वंस, खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पता है नहीं अच्छा है, बट देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रैशनलाइजेशंस हैपन एंड वी ईट इट। व्हाई? बिकॉज वो जो टंग जो है, वो जो टेस्ट है, वो हमारा माइंड जो इनपुट है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। पता है स्मोकिंग इज नॉट गुड, फिर भी कैसे वी डू इट? तो इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज ड्राइविंग आवर डिसीजन, व्हिच इज दिस, द फाइव सेंसेस, राइट? टेस्ट है, अपने को कोई दिखने में अच्छा लगे, कुछ सुनने में अच्छा लगे, दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग इट। स्पर्श किसी का, बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ इट, वी टेक डिसीजंस ड्रिवन बाय दोस थिंग्स व्हिच ग्रेटिफाई अस इन द शॉर्ट टर्म। छोटे में तो इमीडिएट प्लेजर तो आता ही आता है ना? मैंने वो लड्डू खा लिया तो उस समय तो मुझे अच्छा ही लगता है, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका अच्छा नहीं है। तो व्हाट शुड आई ट्राई टू मैक्सिमाइज, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म बेनिफिट? बट उस समय, वो डिसीजन लेने समय, अगर मेरा माइंड वैसे ही कंट्रोल में ना हो, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन ओनली, राइट? इसीलिए, एंड मेक अ रॉन्ग डिसीजन। Now, यही, ये तो छोटू सा है, मैं अकेले को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे को केवल डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, पर यही अगर बड़े बड़े डिसीजंस लेने में आए, यही अगर बड़े जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें आए कि नहीं यार, इसका तो पर्सनल एनिमिटी है, इसलिए उनको, वो तो मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे तो काम नहीं चलता है ना? या हाउ डज हनी ट्रैपिंग वर्क एट दैट लेवल? आप सोचो, हनी ट्रैपिंग एट द हाइएस्ट लेवल, फिर क्या करते हैं? The person is compromised and then taken advantage of. What is that? Why did such a person who's gone to that place become a victim to honey trapping? No control over mind, na? इसीलिए भीष्म कहते हैं सबसे पहले एक राजा के लिए, यू सी दैट कॉन्वर्सेशन वेयर युधिष्ठिर पूछते हैं राजा की सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी क्या है, और भीष्म कहते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी है आत्मजेय, आत्मा पे विजय, इंद्रियों पे विजय, दैट इज द फर्स्ट, बिकॉज ही से अजितात्मा नरपतिम कथम जये त्रिपुनाम, कि अगर जिसका स्वयं पर ही कंट्रोल ना हो वो अपने एनिमीज पे कैसे कंट्रोल करेगा, वो तो बाद जगह जगह पे दे विल एक्सप्लॉइट हिज फ्लॉज ना, तो सबसे पहला तो स्वयं पे कंट्रोल है, अगर स्वयं पे कंट्रोल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी राइट।
पर इसका एक्सट्रीम क्या है? क्योंकि चलो ठीक है, इस हिसाब से तो हम सब लोगों को पहाड़ों में जाके योगी बन के ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करना
हाँ
चाहिए, ताकि हमारी इंद्रियां बिल्कुल इतनी अपने वश में हो जाएं कि, पर हमें तो राजकाज भी चलाना है। बहुत सारे लोग ये बड़ा कन्वीनियंटली बोलते हैं, भाई मैं तो दिन में 10 मिनट मेडिटेट करता हूँ,
हाँ
मैं तो साधु नहीं बन सकता, राइट? सो दे फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, राइट?
करेक्ट
लाइक कि मैं वीकेंड पे जाके पी लेता हूँ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस में मैं नहीं पीता। इस तरह
करेक्ट
के ऐसे शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं।
विनम्र, ये किसको बता रहे हैं? तू सिचुएशन देख, सॉरी तुम
नहीं,
सिचुएशन
इट्स ओके। जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात करते हैं, ऐसी बात
नहीं,
करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं
कई बार हो जाता है कि अरे तू कैसे कहते हैं,
नहीं, कोई
लेकिन वी
बात
आर
नहीं,
फ्रेंड्स
लेट
एनीवेज।
इट यूज, कोई नहीं।
तो युधिष्ठिर तो एक्चुअली भाग जाना चाह रहे हैं ना, वो कह रहा है मैं वनवास चला जाता हूँ, मुझे
वहीं
राज चाणक्य
सीखूंगा मैं।
चाहिए, है ना,
हाँ
मैं तो वही करूंगा। उसको कह रहे नहीं नहीं वैसा मत करो, ये तुम्हारा धर्म है। तो ये जो इंद्रजय की बात है वो गृहस्थों के लिए है, इट इज नॉट फॉर पीपल हु वांट टू रन अवे, नो दैट इज नॉट द पॉइंट, इट इज अ बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ अच्छा ही मत करो, इनफैक्ट दैट ऑल्सो दे से दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेलफेयर एज वेल। ठीक है, आपका भी ऐसा नहीं है कि कुछ करो ही मत, इंडल्ज ही मत करो, सब कुछ करो, दे आर सेइंग एंजॉय द प्लेजर्स बट विदाउट गेटिंग एडिक्टेड टू इट, विदाउट बिकमिंग अ स्लेव फॉर इट। सारे लोग बैठे हैं, यू आर टेकिंग अ सिप ऑफ अल्कोहल, फाइन, बट डोंट यू नो ऐसे पी के पड़ जाओ एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू के नॉट यू नो हैव द कंपनी ऑफ वुमेन, यू वेरी वेल कैन, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट हनी ट्रैपिंग कैन हैपन, राइट? हर
और यू आर टू
चीज पे
बिजी नेट
बैलेंस
की
होना
आपकी
चाहिए।
प्रजा खराब हो रही है, आपको होश ही नहीं है।
तो इंजॉय द प्लेजर्स, इनफैक्ट गीता में कृष्ण कहते हैं, विच इवन भीष्म सेज, धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि अहम्, यू हैव डिजायर्स, यू सीक योर वेलफेयर, यू सीक लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एज वेल, बट नॉट सो मच दैट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट शुडंट बी डन, डोंट गेट एडिक्टेड, डोंट गेट एनस्लेव्ड बाय दोज डिजायर्स, इंजॉय इट बट ऑल्सो विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट,
या
दैट इज द पॉइंट। कि जैसे तुमने कहा कि अच्छा यू हैव गो आउट विद फ्रेंड्स फॉर श्योर, पर आप रोज ही फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो टू द एक्सटेंट कि ऑफिस में लेट हो जाता है, पता ही नहीं ऑफिस में क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप चिल नहीं कर सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ऑफकोर्स सब करो। इनफैक्ट अगेन कृष्णा सेज कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मसु चेष्टस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि हम जो कह रहे हैं कि कंट्रोल करो, ये करो वो करो, पर कैसे, इसका मतलब सब छोड़ दो ऐसे नहीं, युक्त आहार विहार, केवल यही खाओ वो मत खाओ, नहीं, जो खा रहे हो प्रपोर्शन में खाओ, एज मच एज यू नीड, युक्त विहार, केवल काम कर रहे हो ऐसे नहीं, यू नीड रिक्रिएशन, टेक दैट ऑल्सो, डोंट बिकम कि अभी अभी काम कर रहे हो तो वर्कहोलिक हो गए और कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि
बिकॉज
सोच
दैट इज ऑल्सो
के
एन
नहीं कर रहे,
एडिक्शन।
दैट इज ऑल्सो गिविंग इन टू योर, इट इज लाइक एन एडिक्शन ओनली ना, यूर बींग एनस्लेव्ड बाई इट, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हैव अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन, हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ। फॉर अ राजा द ओनली थिंग इज वेर इज दैट बैलेंस टूवर्ड्स देयर प्रॉबली, बिकॉज उनका कार्य स्वयं से पहले प्रजा है, तो अगर प्रजा की आवश्यकता हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, देन यू माइट हैव टू गिव अप योर ओन प्लेजर्स एज वेल, इट्स नॉट एज इफ नेवर हैव इट, बट नॉट इन अ वे दैट इट इंटरफियर्स विथ योर टास्क।
ओके, आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। सो फिर इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन आती है त्रिवर्गा की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिवर्गा क्या डॉक्यूमेंट है, उसका क्या महत्व है महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी सब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने पहली बार नाम सुना त्रिवर्गा
हाँ,
का।
सो त्रिवर्ग आज अपने पास नहीं है, त्रिवर्ग में क्या होगा उसका अंदाजा है। सो व्हाट इज त्रिवर्ग? तो बेसिकली जब भीष्म बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि कैसे नीति शास्त्र आया, तो वो जब राजधर्म की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज विच अ राजा हैज टू फॉलो। ठीक है, एंड ही सेइंग कि कहां से आया, कैसे बनाइए, कि मतलब जरूरत काहे पड़ी. पहली बात तो अगर सभी लोग, राजा की आवश्यकता क्या है, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, व्हाई डू यू नीड अ लीडर इफ एवरीबॉडी सेल्फ रेगुलेटेड, यू डोंट नीड अ लीडर. सो फिर तब भीष्म कहते हैं कि एट वन पॉइंट ऐसा ही था, एवरीबॉडी वाज सेल्फ रेगुलेटेड. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे किसी को देख के जेलसी हो गया, कम रिसोर्सेज हैं, ज्यादा डिमांड है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू स्नैच अवे. तो फिर आप कैसे मैनेज करो ऐसे सोसाइटी को, हाउ डू यू एंश्योर कि जस्टली डिविजन हो एवरीथिंग, जस्टली लोग शांति से रहे, एक दूसरे को मार तोड़ ना दे, तो कैसे करो. सो देन दे द प्रजा सेड, द पीपल सेड कि हमको कुछ तो ऐसा सिस्टम जो दो, जिससे हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके,
एक ऑपरेटिंग मैनुअल,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं देता हूँ, सबसे पहले तो आपको पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना, वो प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे. तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए, धर्म अर्थ काम इससे रिलेटेड. अब धर्म अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम क्या है, बेसिकली सनातन धर्म में हम कहते हैं कि उसके चार पुरुषार्थ हैं, फोर पिलर्स ऑफ सनातन धर्म, विच आर बेसिकली फोर परसूट्स फॉर एनीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म, और बेसिक सनातन बेसिकली फॉर एवरीबडी. दीज आर डिवाइडेड इंटू फोर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष. अब ये त्रिवर्ग है, इसमें मोक्ष की बात नहीं है, बिकॉज मोक्ष जो है ना वो स्पिरिचुअल परस्यूट है, लेट्स कीप इट आउट फॉर नाउ, फॉर नाउ. ठीक है, वो पर्सनल ये है, उस पर बात नहीं करते हैं. पहला तीन ये है धर्म अर्थ काम. इसका अर्थ क्या, कि पहला है धर्म, कैसे वर्च्यूज लोगों में होने चाहिए, कैसे यू एंश्योर कि न्याय एस्टैब्लिश हो, वगैरह वगैरह. बेसिकली व्हाट इज धर्म, what are the gunas that make dharma, all of that, right? All of us need to live our life which is aligned with dharma in the way, in a way, matlab you live in a way that sustains the society. Jiske liye you live with virtues, don't kill each other for no reason, have a sense of proportion, learn to forgive, shanti se raho, vagere vagere, lots of things, right? And righteously help each other out, all of that, that is the dharma part of it. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिचुअल्स, बिकॉज कोई भी सोसाइटी है तो वो उसको साथ रखने के रिचुअल्स होते हैं, वगैरह वगैरह. सो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ धर्म. यू हैव अर्थ. नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, विदाउट रिसोर्सेज. रिसोर्स जनरेट करना पड़ता है, राइट? यू हैव टू अलाउ रिसोर्स जनरेशन, यू हैव टू एंगेज इन रिसोर्स जनरेशन. सो दैट इज द अर्थ पार्ट ऑफ इट. पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता. तो अगर आपको धर्म भी जीना है तो पहले तो आपको रिसोर्स आपके पास होना चाहिए. यू हैव टू बी समृद्ध, वेल्दी, ऑल ऑफ दैट. योर बेसिक नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड एंड अलाउ यू टू इवन प्रोग्रेस मोर, राइट? दैट इज द अर्थ पार्ट ऑफ इट. काम आर द अदर प्लेजर्स, इंक्लूडिंग द फिजिकल प्लेजर्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि लोगों को खुशी नहीं होनी चाहिए. आप सब कमा क्यों रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ, विच ऑल्सो इंक्लूड्स सम ऑफ द प्लेजर्स. Right. Also, these pleasures have an evolutionary need, right?
Right.
हम lust की बात करते हैं, पर unless and until there was lust and attraction, बच्चे कैसे होते?
Right. How would the populations grow? How would your progeny move forward?
Correct. Exactly. Also, if there is no desire, how will you even progress or prosper?
If you have no desire, you have no drive to work for anything.
Absolutely. So you need that also, right? So all these are there. ये तीन जो है धर्म अर्थ काम, तो इनके इनको साथ लेके कैसे जियो. सो त्रिवर्ग, थ्री इज थ्री. तो इनके बेसिस पर एक पॉलिसी मैनुअल, एक नीति शास्त्र का ग्रंथ ब्रह्मा जी ने बनाया, दैट वाज कॉल्ड त्रिवर्ग. बट इट वाज ह्यूज, ही कवर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दैट, दैट्स व्हाट भीष्म इज सेइंग. तो शिवजी जो है उन्होंने उसे लिया और उन्होंने कहा लेट मी मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड रीड. तो उन्होंने उसे छोटा किया, ठीक है? तो उन्होंने उसे कम किया. फिर इंद्र बाहुदंत, उसने बोला ये तो अभी भी बहुत बड़ा है, जो लोग है पृथ्वी पे उनके लिए दिस इज टू मच. तो उसने और छोटा किया. फिर बृहस्पति जी ने और छोटा किया. फिर शुक्राचार्य जी ने और छोटा किया, ठीक है? तो ऐसे कर करके वो और छोटा हो गया. फिर वो मनु जी को मिला. सो जो हम स्मृति शास्त्र कहते हैं ना, धर्म शास्त्र जो कहते हैं कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, वगैरह वगैरह, दे आर नाउ ऑल बेस्ड ऑन दैट. सो व्हाट वी से, व्हाट वी बिलीव इज कि हमारे जो धर्म शास्त्र है, नाउ व्हाट इज धर्म शास्त्र, बेसिकली दिस नीति शास्त्र ओनली, राजधर्म वगैरह, इट हैज अ डिवाइन ओरिजिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है?
श्योर.
तो वहां से वो आता है. फिर उसके बेसिस पर समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, देश काल अनुसार, उस पे लोगों ने अपने अपने और टिप्पणियां दी, उसको और चाहिए तो चेंज किया, ट्विस्ट किया, ट्वीक किया, तो उसी प्रकार से वो एक के बाद एक आने लगा. ठीक है, तो ही स्टॉप्स एट शुक्रनीति एंड ही सेज, इसको ही फिर मनु जी को मिला एंड द एक्चुअली ही सेज कि ये पहले बन गया, दिस वाज ऑल डन, देन द ये वाज कि अब इसके प्रमाण से, ये नीति शास्त्र के प्रमाण को एनफोर्स कौन करेगा, देन वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ राजा. ठीक है, और फिर देयर इज अ स्टोरी ऑफ पृथु एंड वो सब आता है. सो पृथु को पहले राजा कहा जाता है, सो ऑल दैट हैपेंस. सो दिस इज हाउ द स्टोरी इवॉल्व्स. नाउ इंटरेस्टिंगली अ रेफरेंस टू दैट कम्स इन अर्थशास्त्र. ठीक है, जिसमें अर्थशास्त्र में शुरुआत में ही चाणक्य कहते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट माइंड, आई एम बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट द ऋषिज बिफोर मी हैव डन. करेक्ट, एंड ही एक्चुअली पेज हिज ओबीडियंस टू बृहस्पति एंड शुक्राचार्य जो इसमें आ रहे हैं, है ना,
विच इज स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन, लाइक स्कॉलर्स डू इट, राइट, आई पे होमेज टू, इन्होंने पहले रिसर्च पेपर लिखे थे, अब मैं इसके ऊपर आधारित कर रहा हूं,
क्योंकि आई एम यूजिंग दैट एंड उसके ऊपर आई एम गिविंग माय मंतव्य कि आज के प्रमाण से इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो, जो भी. सो दैट इज हाउ दीज शास्त्रास हैव आल्सो इवॉल्वड ओवर टाइम. तो इट वाज नॉट एज इफ कि अच्छा एक हो गया, ऐसा नहीं था. देयर इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हैव कम टू अस विद एवोल्यूशन. सो दैट्स द आइडिया ऑफ त्रिवर्ग.
दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सरप्राइजिंग फॉर मी एंड आल्सो अ रेवलेशन फॉर बोथ अकाउंटेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंस गाइज, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स. मैं बताता हूँ कैसे. शुक्राचार्य का एक कोट है स्टार्टिंग में, उसको यूज करूंगा और एक दो कोट्स और पढ़ूंगा एंड आई विल टाई देम टुगेदर. ओके, शुक्राचार्य सेज अ किंग शुड ऑलवेज रिमेन एंटरप्राइजिंग, मेकिंग अलायंसेस व्हेन नेसेसरी एंड मार्चिंग फॉर वॉर अगेंस्ट एनिमीज हु डिजर्व टू बी पनिश्ड व्हेन नेसेसरी. दैट्स नंबर वन. ओके, देन आई विल मूव ऑल द वे फॉरवर्ड एंड गो टू द एंड ऑफ माय नोट्स एंड दिस इज फ्रॉम नारद मुनि. सो आर योर एक्सपेंडिचर्स लोअर देन योर इनकम, इज योर एक्सपेंडिचर आइदर 1/4, 1/2 or 3/4 of your income, not more. Second, do your bookkeepers come to you with daily accounts in the first half of the day? सबसे पहले तो ये बता रखा है कि एक king को enterprising रहना चाहिए, पैसे जुगाड़ते रहने चाहिए,
yes,
alliances बनानी चाहिए. ठीक है, we often in common culture associate kings with two things, pleasure and war. पर हम किंग्स की एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी ट्रेजरी को भरना, कि स्ट्रेटेजिकली अलायंस कर लिया, या हम जोधा अकबर देख लेते हैं कि शादियां हो गई वो और बढ़ाने के लिए, या हम कॉमन पार्लेंस में देखते हैं कि दो बड़े घरों की शादी हो गई अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वैसे देखते हैं. आई डोंट थिंक किंग्स की जो एंटरप्रेन्योरियल सूझबूझ होती है उसको कवर किया जाता है, नंबर वन. फिर अगर वाकई में इफ नारद मुनि हैज सेड दिस, आई एम अमेज्ड बिकॉज दिस इज व्हाट मोस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स प्रीच. They say that, you know, you should spend less than you make. And I'm very surprised.
Absolutely. Actually, aap raja ka karya dekho. To even jo Bhishma ji ne jo list diya hai, usme protection of your kingdom, ye sab to hai. But a major task is ensuring you have a full treasury. Now, this is the aspect of artha. Hum jo dharma artha kama ki baat karte hai na, artha. Artha ke alawa to aap प्रॉस्पेरिटी कहाँ से लाओगे, आप लोगों की का रक्षण कैसे करोगे, आप लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे, अर्थ तो चाहिए ना, और अर्थ कहाँ से आएगा. उसके लिए वो एक्चुअली बताते हैं अर्थ के लिए देर आर फोर थिंग्स विच भीष्म टॉक्स अबाउट. कि वन इज यू गेट योर पीपल एंगेज्ड इन रिसोर्स जनरेटिंग एक्टिविटीज, पहला. दूसरा, गिव देम द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स एंड एवरीथिंग सो दैट दे कैन डू अ गुड जॉब ऑफ इट. तीसरा, ऑल्सो टैक्स देम. एंड देन जो नॉन रिसोर्स जनरेटिंग एक्टिविटीज है, हम देख कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम महाभारत की बात कर रहे हैं.
नहीं नहीं नहीं,
दिस इज व्हाट इट सेज,
वी मूव टू द वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ हाउ डू यू मेक श्योर एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो देन ही से कि जो नॉन रिसोर्स जनरेटिंग एक्टिविटीज है उसको कम करो, उसको पिनलाइज करो. ठीक है, ये सब राजा को करना है. इसके ऊपर ही सेइंग ऑफ कोर्स यू कांट डू इट ऑन योर ओन, यू नीड टू डेलीगेट ऑल ऑफ इट. हाउएवर, जो तुम्हारे ट्रेजरी और फाइनेंस की इंफॉर्मेशन है उस पर तो तुमको पता होना ही चाहिए. यू विल हैव समबडी हु इज अ मिनिस्टर एंड देयर आर मिनिस्टर्स टू टेक केयर ऑफ ट्रेजरी एंड ऑल ऑफ दैट, पर यू कैन नेवर लूज साइट ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, दैट इज फॉर श्योर. और उसके लिए फिर आप जैसा भी करो, बिकॉज फुल ट्रेजरी के बिना तो आप सर्वाइव ही कैसे करोगे. आपको अगर आपकी आर्मी स्ट्रेंथ भी चाहिए तो आर्मी स्ट्रेंथ के लिए भी तो ट्रेजरी चाहिए ना. इनफैक्ट यू सी, जब वो कहते हैं कि राजा का क्या कार्य है, व्हेन ही डिफाइंस इट ना, तो एक तो ही सेज प्रजा का वेलफेयर, देन उसी के टाइम पे ही इज ऑल्सो सेइंग दिस कि लोगों का वित्त जो है, लोगों का वेल्थ है ना, डोंट डिस्ट्रॉय इट, थिंक ऑफ इट. कि जनरली लोग फ्रॉम अ कैपिटलिस्टिक माइंडसेट वी वांट टू हैव मोर एंटरप्रेनर्स, बट दिस एंटरप्रेनर्स वी वांट देम टू आल्सो हैव एन एम्पैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स द सोसाइटी,
दे शुड कीप डूइंग देयर सीएसआर एक्टिविटीज,
करेक्ट. बट फ्रॉम अ कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव व्हाट दे से कि भाई लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, वी विल जस्ट गिव देम सैलरी. आवर व्यू, द सनातन व्यू, इज कंप्लीटली अपोज टू दैट. वी आर सेइंग वी नीड वेल्थ क्रिएटर्स बिकॉज द वेलफेयर, द समृद्धि ऑफ द राज्य डिपेंड्स ऑन द वेल्थ क्रिएटर्स. जब टैक्स आएगा तभी तो आप जो आर्टिस्ट है उन सबको पैटर्नाइज करोगे. जो बाकी आपके जो जो लर्नड लोग हैं, जो गुरुकुल चलते हैं, वो सब हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उस सबको आप पैटर्नाइज कैसे दोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो, राइट? और पैसा तो उन्हीं से आएगा. सो यू सी दैट देर आर इंजंक्शंस टू द ऑर्डर कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर वेल्थ क्रिएटर्स, यू शुड एंश्योर कि उनको जो चाहिए वो आपको उनको मिलता रहे, राइट? दिस इज सच अ प्रोग्रेसिव थॉट, थिंक ऑफ इट. वो ऐसे नहीं कह रहे कि सब राजा का हो या सब कुछ राजा जिसके पास जो है वो ले लो. इनफैक्ट इवन जो टैक्स कलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, वो कैसे कहते हैं कि हम जैसे आज तो चलो हम गायों को भी केवल यू नो फैक्ट्री गाइज जैसा कर दिया है, उनका उनको मिल्क करने के लिए, दूध लेने के लिए. पर उस समय वो कहते हैं जैसे गाय को आप मिल्क करते हो ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो और बछड़े को भी दूध मिले, उस प्रकार आप लोगों से टैक्स लो जिससे वो एक्सप्लॉयड भी ना हो, उनका भी नरिशमेंट चलता रहे और आपके लिए भी अच्छा हो. जैसे वो मधुमक्खी फूल फूल पर जाकर थोड़ा 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 हनी कलेक्ट करती है,
टेकिंग ऑल फ्रॉम वन,
ऑल फ्रॉम वन, करेक्ट, थोड़ा 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 लेती है वैसे, और फूल को परेशानी भी ना हो. जब मधुमक्खी हनी लेती है तो फूल तो वैसे का वैसा रहता है ना, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, उसका विध्वंस नहीं हो जाता है. तो वैसे लो ताकि फूल भी खिलता रहे और आपको आपका टैक्स भी मिल जाए. दिस इज द थॉट कि आप एक्सप्लॉइट मत करो. एंड द थंब रूल इज 1/6, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस शुड बी टेकन. आप सोचो, और राजा प्लस दे विल से, एक राजा जो टैक्स लेता है उसका कर्तव्य है कि वो जो फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करे. दिस इज सच अ ह्यूमनली अप्रोच टू ऑल ऑफ दिस, टू व्हाट वी, जैसे देयर इज अ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म करके एक कॉन्सेप्ट आता है. दिस इज इन लाइन विद दैट, इन दैट सेंस, राइट?
दो सवाल, हां जी, यू वर सेइंग समथिंग.
नो नो, दैट्स इट.
दो सवाल उभरते हैं इस चीज से, वो ये है. नंबर वन, हम महाभारत पे हमेशा कैरेक्टर्स पे और स्टोरीज पे फोकस करते हैं. हम सोचते हैं, हम कर्ण की महानता पे देखते हैं, हम उसको रॉन्गली और राइटली सूत पुत्र का करार देते हैं, हम अर्जुन की स्ट्रेंथ को देखते हैं, हम अर्जुन की सॉरी स्किल को देखते हैं, भीम की स्ट्रेंथ को देखते हैं, यू नो युधिष्ठिर की सच बोलने की एबिलिटी, जस्टिस को, कृष्ण की जो वो सब सूझबूझ होती है, सबको देखते हैं. वी सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ महाभारत. आई थिंक द फैक्ट दैट यू ब्रॉट दिस अप, that it is actually also a treatise on administration. Why has this been ignored for so long in popular discourse?
I think Mahabharata is huge in one sense. ठीक है, as an itihas also it is huge. 1,00,000 श्लोक पढ़ना सबके बस का भी नहीं है. इसलिए और देन अब अपने यहाँ तो मान्यताएं थी कि महाभारत तो घर पे भी नहीं रख सकते, बिकॉज महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा. I still kept keep getting asked about it. इसलिए यू सी इन माय इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है वो बॉक्स में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ो महाभारत, महाभारत धर्मशास्त्र है, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, राइट? तो ये मान्यताओं के कारण और बहुत ऐसे सारी चीजों के कारण वी इग्नोर्ड इट. अच्छा, जब वो टेलीविजन में भी पोर्ट्रे हुआ तो वॉट इज मोर इंटरेस्टिंग, इट इज द स्टोरी विच इज मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, राइट? इसलिए इवन फर्स्ट बुक, फर्स्ट फोकस इज ऑन द स्टोरी. हाउएवर द विजडम इज सो प्रोफाउंड that I thought यार इसको ignore तो नहीं कर सकते. It is more of a didactic reading कि अच्छा ये policy होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, फलाना ढिकाना, right? That reading is not like a story reading. आप novel पढ़ते हो वैसा नहीं है. It requires a lot more engagement, lot more focus when you are reading it, having to understand it, see how it applies in the current context. Actually, I'm loving this because you've actually done what I want people to do. What is the purpose of this book? कि इसमें से लो और देखो how it fits to us today, right? क्योंकि आजकल देख हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, हम कह रहे हैं वेस्टर्न लेंस निकाल दो, एंड फ्रॉम एवरी प्लेस, राइट? पॉलिटिकल स्पेस हो या एजुकेशनल स्पेस हो या इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेस आप हो कि हर चीज में आप जो बाहर वालों ने लिखा है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो. उन्होंने लिखा है अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से. ठीक है, दैट्स इट. वो ठीक है कि आप वो लेंस निकाल दो जिससे आप अपने आप को हमेशा से देखते थे जो आपका लेंस नहीं है. तो फिर हमारा लेंस क्या है? वी नीड टू नो दैट, राइट? दिस इज आवर लेंस. ऑफकोर्स इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आई हैव नॉट कवर्ड बिकॉज आई डेंट थिंक इट वॉज रेलिवेंट फॉर दिस टाइम. जैसे इसमें वर्णाश्रम धर्म का है, बहुत ज्यादा रिचुअल, ये जो पाप पुण्य उन सब पर भी बहुत कुछ है कि आप प्रायश्चित कैसे करो, ये वो. आई डेंट थिंक इट वॉज रेलिवेंट फॉर दिस बुक एटलीस्ट. आई वॉन्टेड टू कीप इट मोर फोकस्ड ऑन आज हम इसका कैसे, आज हमारे लाइफ में हम इससे क्या सीख सकते हैं. वॉट इज दैट लेंस इन आर प्रैक्टिकल लाइफ टूडे दैट दिस कुड गिव अस द विजडम ऑफ भीष्मा कुड गिव अस. सो आई हैव रिटन इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव.
आज सुबह मैं जब व्हेन आई वाज एट द कैफे मैंने कुछ क्लासिकल म्यूजिक चलाया एंड आई वाज रीडिंग द बुक एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, यहां से सारे के सारे पेजेस डॉग ईयर कर रखे हैं बिकॉज़ आई वांट टू रिविजिट देम अगेन एंड अगेन. द इशू इज आई थिंक वही वाली बात है कि इग्नोरेंस, संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज ना होना, इंटरेस्ट दिखाना पर सुपरफिशियल इंटरेस्ट दिखाना, लोगों से सुन लिया ठीक है, पर अब हर इंसान, अब इट्स वन थिंग टू नो एंड लव योर हीरोज एंड नो योर कल्चर, पर हर आदमी या हर औरत चाहती है कि जब प्रैक्टिकल बात आ रही है जो आप डेली इंप्लीमेंट कर सकते हो. देखो बहुत मुश्किल है राम की तरह सोचना, राम की तरह मुश्किल राह पर चलना, या युधिष्ठिर की तरह जस्टिस सेंस प्रिवेल करना, बट हम सब किसी न किसी कैपेसिटी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कुछ ना कुछ, हम सब किसी न किसी कैपेसिटी में बिजनेस करते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट आई थिंक आई एम वेरी सरप्राइज. इन अ वे इट्स अ लॉट बेटर देन द अर्थशास्त्र, मतलब मैंने कम ही पढ़ी और आपकी सेशन ज्यादा अटेंड करें.
आई होप अर्थशास्त्र पर भी कभी लिख पाऊं कृष्णा थिंग बिकॉज़ दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग.
बट इसके अंदर लाइक देयर आर सो मेनी नुआंसेस दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक वन ऑफ द थिंग्स यू मेंशन एंड आई विल लाइक टू जस्ट ब्रिंग दिस अप एक्चुअली समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ जस्ट अ सेक. यस, बी इट जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस, this lesson of Bhishma stays relevant. A leader must remember friends and enemies are not permanent. This is why he must build issue-based alliances. अभी देश में भी issue-based alliances बन रही हैं. और I think अभी इस किताब को पढ़ने से पहले मेरा भी दोस्तियों को लेकर बड़ा simplistic view था. I wouldn't say naive, but I've had the privilege of testing my friendships through many, many years and many, many things. और गॉडफादर पिक्चर में बोलते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, यू नो योर एनिमीज क्लोजर, राइट? सो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि एक तरफ हम बात करते हैं कि आप पिता का धर्म निभाओ, आप दोस्त का धर्म निभाओ, करण जैसा निभाता है, एंड एक तरफ यहाँ पे राज्य चलाने के अंदर लोगों की असलियत देखी जा रही है कि देखो ये आपके जो दोस्त हैं आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके जो दुश्मन हैं दुश्मन नहीं होंगे, तो आप बेटर है इशू बेस्ड अलायंसेस बनाओ नोइंग कि ये कभी भी खत्म हो सकती है. Isn't that a recipe for complete mental peace, complete mental disaster and being on guard all the time?
No, so we have to differentiate here. वो जब वो कह रहे हैं तब वो स्टोरी कैसा है, क्या सुंदर स्टोरी है, मैं वो स्टोरी बताऊं?
Please.
So that we understand the context. इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स ही ना रखे, ऐसा नहीं है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स ना हो. पर्सनल रिलेशनशिप्स वो सब ठीक है, बट वेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कांट बी इमोशन बेस्ड इज द आइडिया. ठीक है, यू कैनॉट रन एन ऑर्गेनाइजेशन और कैनॉट डू व्यवहार ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अरे उस कंपनी के साथ कर लो वो मेरा बहुत अच्छा यार है. नहीं, उस केस में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा उसका कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, अगर वो मेरे से इतना ऑर्डर्स ले रहा है वो मुझे दे पाएगा कि नहीं. अच्छा, इन सम केस यू मे इवन हेल्प देम आउट ऑफ गुड फेथ, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? बट इट कैनॉट बी इमोशनली ड्रिवन डिसीजन. If you are taking an emotionally driven decision, which you may have to at some point, at least be aware. And then don't expect a different outcome. Right? So that is important when it comes to transactions, relation, as in this kind of relations. Person is mein aap rakho na, friends. That doesn't matter. But also remember, hum jab ek raja, ek CEO, ek pradhanmantri ki baat kar rahe hain, toh lot of people will try to be friends to take advantage of that person.
Correct. Right?
Hence, you have to be very careful who do you allow to come close to you. Because सबसे ज्यादा धोखा भी ना सबसे पास वालों से ही मिलता है. Because they have access to you ना, दूर वालों को तो नहीं है. और एक राजा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, वो जियो पॉलिटिक्स का जो पॉइंट है, वो जो कहानी आती है, सो ही एक्चुअली नरेट्स अ फेबल भीष्म पितामह वहां पे, कि एक चूहा है जो एक बिल में रहता है, और बिल बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे वो बिल है जिसमें वो चूहा रहता है. उस पेड़ पर एक बिल्ली है, लोमश नामक बिल्ली है, और पलीत वो चूहे का नाम है. तो जो बिल्ली जो है वो तो चूहे को खा जाती है, तो इसलिए हमेशा जो पलीत है ना, वो तो डरा डरा सा रहता था इस बिल्ली से, कि यू हैव टू बी केयरफुल ना, यू आर डीलिंग विद एन एनिमी हु इज वे मोर पावरफुल देन यू एंड विल टेक यू गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब एक दिन एक हंटर आता है और वो एक जाल बिछाता है, उस जाल में जो लोमर जो बिल्ली है वो फंस जाती है. ठीक है, थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव ना, कि एक बहुत बड़ा पावरफुल राष्ट्र है, वहां पे कुछ तो आपदा आ गई, कैलोमिटी आ गई, और जो छोटे राज्य है जो बाकी उससे बच के रहते थे, बिकॉज वो कभी भी गॉबल अप कर देगा, दे आर नाउ हैप्पी. अच्छा, अब होता क्या है कि दिस गाय इज लाइक रनिंग अराउंड, अच्छा अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. और वो उस नेट के पास जहां वो लोमेश है वहां से गुजर रहा है, तभी ऊपर उसे एक उल्लू दिखता है, एक आउल दिखती है, हु इज टारगेटिंग द चूहा टू ईट इट. और एक नेवला, एक मंगूस है बड़ा सा, जो दूसरी ओर से आ रहा है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, देयर इज थ्रेट ऑन बोथ साइड्स. पहले द थ्रेट वाज ऑफ द बिल्ली, इवन इफ द नाउ द बिल्ली हैज बीन कैप्चर्ड, वो भी परेशानी में है, पर अब तुम भी परेशानी में आ गए हो.
फियरलेस हो गया ज्यादा, वो
फियरलेस हो गया, पर अब अगेन वो डर गया ना, क्योंकि दो और एनिमीज आ गए. तो जो आपका एनिमी है वो भी तकलीफ में है, आप हो, आप भी तकलीफ में हो, और अभी तकलीफ में क्यों, क्योंकि बाकी जो ये थ्रेट एनिमी से थ्रेट नहीं है, बट बाकी दो नए एनिमीज खड़े हो गए. तो फिर हाउ डू यू सेव योरसेल्फ, आइडियली ये वुड बी यू डोंट अलाय विद योर एनिमी ना, क्योंकि वो तो वैसे ही आपको खा जा रहा है. पर आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि यू कैन स्ट्राइक अ शॉर्ट टर्म अलायंस, बिकॉज आप दोनों को फायदा होने वाला है उससे, एंड दैट इज वॉट दैट पलीत डज. ही सेज मैं तुम्हारी नेट का कुतर देता हूँ, पर तुम मुझे खाना मत, अगर मैं अंदर आऊं, तुम मैं अंदर आ जाऊंगा, तुम मुझे अपने चेस्ट में लेके सो जाओ, ताकि वो दोनों डर जाए, वो आउल है और जो नेवला है वो डर जाए, फिर मैं उसको तुम्हारी नेट काट दूंगा. नाउ बिकॉज वो जो बिल्ली है शी इज डेस्परेट राइट, बाहर निकलने के लिए, इसको खा जाएगी तो भी बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि हंटर आ जाएगा, इसलिए उस समय शी कीप्स द वर्ड और वो उसको अपने पास रखती है. तो नेवला और उल्लू तो चले जाते हैं, सो नाउ दिस गाय सेफ. बट इसके बाद व्हाट डज द चूहा डू, वैसे धीरे 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 कुतरता है, एंड दिस पर्सन द बिल्ली इज गेटिंग वेरी डेस्परेट, कि अरे क्या कर रहे हो तुम, काट दो जल्दी वगैरह. एंड ही इज लाइक नहीं नहीं, मैं तुमको सही टाइम पे काटूंगा, बिकॉज अभी भी तो तुम मुझसे ज्यादा ही स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, अभी भी यू आर अ नेचुरल एनिमी टू मी राइट, इवन टूडे यू आर अ नेचुरल एनिमी टू मी. So I have to be very careful of you, and I will be. But I will keep my word. जब hunter just पहुंच चुका, तभी उसने वो net काटा, ताकि rather than attacking the chuha, the billi protects itself, right? How smart is this? And we are told be careful. So emotion driven कुछ नहीं होना चाहिए. In these situations, yeah, in this kind of situations, because everybody looks out for themselves. Jitne hai, they are looking out for themselves. Bhale hume badi badi baate kahe, hai na? Wo jo abhi Russia ka issue hua tha, everybody is like, aap kaise tel le rahe ho, aap kaise tel le rahe ho. Aray, aap log bhi to le rahe ho. Wo aap koi nahi baat kar rahe, hai na? Europe mein bhi, wo log lek to rahe the. Par nahi, aap kaise le rahe ho? And what did we say? Everybody looks out for their own gains. And at whatever right time we need to look out for our gains, right? That is important. That is how you strike alliances. Jab jiske saath aapko aavashyakta ho, and be honest about that. Aise nahi ki you're trying to deceive anyone, right? So,
yeah, when we point finger at others, we want them to be serving the world.
Correct.
Self-sacrificial. But andar se, what we want is no sacrifice, maximum.
Absolutely.
Because it's very convenient to point virtue signal karna, ki look at you, you are not doing this. But kya अद्भुत कहानी है ये.
Following, we were falling for that virtue signaling, जो इसमें वो कैट भी कर रही है कि अरे क्यों तुम मुझसे डर रहे हो, मैं हूँ ना, हम लोग दोस्त बन के रहेंगे. एंड ये माउस कह रहा है नहीं नहीं बाबा, we are natural enemies and you're always more powerful. तो I'm not going to fall for this, right? I will look out for myself. तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला. I will look out for myself because that is what is needed. And there is no better geopolitical lesson than this.
That's insane. मतलब मैंने ये कहानी काफी लंबी थी. मैंने कहा ये पलित वली चलो मैं directly पूछ लूँगा. पर मैंने नहीं पढ़ी. But I'm glad you told me this because this makes so much sense. I think you're right. हम लोग especially around the people we who are loyal to us become very casual, very relaxed. We start giving away our secrets, right? Because we think it is a way to foster loyalty and trust. But we don't know कौन कब शत्रु बन जाए कैसे बन जाए. और इस सब के अंदर अब जैसे इस पे एक आपको शायद या आपने तो किताब लिखी है ऑफ कोर्स, पर उसमें धृतराष्ट्र एंड में पूछता है, मैं भूल गया किससे पूछता है, कि
विदुर से
कि यार मेरे को ना मेंटल पीस नहीं है क्योंकि मैंने बुरा करा है इसके साथ. सो अब वो भी छल कपट में इन्वॉल्व था, करे तो उसने भी बहुत सारे कांड. तो दिस इज द प्रॉब्लम राइट, व्हेन यू प्ले टू मेनी ऑफ दीस गेम्स वुड यू लूज आवर ऑन मेंटल पीस.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. देखो हम दुनिया भर को कितना भी सुनाए ठीक है हमने क्या किया है. अच्छा एंड व्हाई इज ही फीलिंग बैड, बिकॉज नाउ ही नोस कि उसने जो किया है उसका रेपरकशन होने वाला है. ठीक है, ही डिड नॉट वांट दैट, ही वांटेड द जो हस्तिनापुर वगैरह फॉर हिज सन फॉर श्योर, बट ही न्यू दैट पांडव्स आर पावरफुल एंड ही न्यू दैट इफ द वॉर हैपेंस माय सन इज गोइंग टू डाई. सो नाउ ही स्केर्ड कि अरे अगर ऐसा होता है तो नुकसान तो मेरा ही है. Right. It is still not the guilt. It is still that. कि अरे यार मैंने ऐसा कर तो दिया but इसका repercussion के लिए मैं तैयार नहीं हूँ. But that doesn't work, right? इसीलिए you see, Vidur says a lot of things, but eventually he is saying this, कि there is no substitute to doing the right thing. You still have a chance. Of course, Dhritaraj didn't listen to Vidur. पर thankfully उनका जो conversation हुआ उससे हमारे लिए बहुत सारा wisdom आ गया.
Let me refer to more of my notes. Okay. One thing that I really like is Apada Dharma.
Apad Dharma.
Apad Dharma. और जब भी हम मैं PR की दुनिया के बारे में थोड़ा जानता हूँ तो एक पूरा सेगमेंट होता है क्राइसिस PR, एक पूरी कैटेगरी क्राइसिस PR करके, कि किसी कंपनी ने कोई प्लांट लगाया उसमें ऑयल स्पिल हो गई, कुछ लोगों की जान चली गई, अब हम उसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं कि अपनी इमेज भी सुधरे और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें पर मिनिमाइज करें अपने ब्रांड के स्टॉक्स पे इंपैक्ट, राइट? लाइक समथिंग अलोंग दोस लाइंस वी डू क्राइसिस कम्युनिकेशन, सेलिब्रिटीज डू इट. आपदा के अंदर जो धर्म होता है राजा का वो पीस टाइम से और वॉर टाइम से कितना अलग होता है, और यदि वो होता है तो उसके अंदर कौन से ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको अब कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है?
यार वो ना इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सो देयर इज नो फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग दैट. तो अगर आप देखो कि भीष्म क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल आपके प्रिंसिपल्स हैं सही गलत के, आपको जैसे ही सेज कि वैसे तो आपको आपकी प्रजा से अधिक टैक्स नहीं लेना चाहिए, इट हैज टू बी जैसे फूल पे लेते हैं. पर अगर युद्ध की सिचुएशन आ गई और आपके पास नहीं है, आपकी ट्रेजरी वीक है, तो आप क्या करोगे? एट दैट टाइम यू मे हैव टू टेक मोर फ्रॉम योर पीपल, बट रादर देन एक्सप्लॉइटिंग देम ट्राई टू गेट देम अलॉन्ग विथ यू, है ना? तो आप उनसे ज्यादा लो एंड देन एक बार कैलामिटी चली जाए फिर गो बैक टू प्रीवियस. डोंट यूज आपद धर्म फॉर योर कन्वीनियंस
एज अ डिफॉल्ट,
एज अ डिफॉल्ट
वी आर ऑलवेज अंडर वॉर.
करेक्ट. तो ऐसा आप कर सकते हो, या वैसे यू माइट हैव सम परहेज एंड ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते वगैरह वगैरह, परंतु सिचुएशन ऐसी आए कि आप मरने पे हो तभी व्हाट वुड मैटर, दैट इज द थिंग, राइट? ये सिचुएशंस तो जो अदरवाइज जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, दे कैन बी रिलैक्स्ड इन अ सिचुएशन वेयर सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
राइट?
हाउएवर ही सेज नेवर यूज इट फॉर कन्वीनियंस, ही पुट्स दैट कैवियट 2-3 टाइम्स, राइट? सो ही इज नॉट सेइंग कहां कितने हद तक जाओ, दैट ही इज नॉट सेइंग, ही इज सेइंग डू व्हाटएवर यू नीड टू, जस्ट दैट be honest about it, don't do it for personal gain, don't do it as a convenience factor, don't do it just to rationalize some issue of yours, right? Be very very clear about that. And he ek cheez wo kehte hain ki there are some things which shouldn't be done, like taking away women, raping women, that is a no no, aisa nahi hona chahiye, nothing at all, just
don't become a barbarian.
So when you go for a war, suppose you cannot avoid a war and the war happens and say you have an upper edge, even then this is something you can never do, not to others, not to your own. So some of this you have to be very careful, do not destroy the property even of your enemy's people. बिकॉज इवन आफ्टर यू टेकन देम ओवर, अगर लोग ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो तुम किस पे राज्य भी करोगे? तो सम ऑफ दीज थिंग्स स्टिल हैव एन ह्यूमन एलिमेंट बिल्ट इनटू इट, इवन इन आपद धर्म. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स नो गो. बट उसके अलावा इफ यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर सर्वाइवल विच यू वुड हैव अदरवाइज नॉट डन, यू नीड टू डू इट. इफ यू नीड टू टेक अप प्रोफेशंस विच यू वुडंट हैव अदरवाइज डन, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप और रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन अ कैलामिटी सिचुएशन इज सर्वाइवल.
बहुत सारे लोगों के घर में कोई आपदा आती है, कोई पैसों की दिक्कत हो जाती है, तो वो ऐसा करते हैं कि वैसे उनको दिक्कत होती है, वो मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर देंगे, या फ्रीलांस करना शुरू कर देंगे, जिनको लोग अक्सर कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि अरे आपका तो इतना बड़ा काम था, आप ये काम कर रहे हो. बट इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट सिचुएशन. देयर शुड बी नो शेम अराउंड दैट.
करेक्ट. यू हैव टू डू व्हाट यू नीड टू डू फॉर सर्वाइवल. एक्चुअली दिस एक्सटेंडेड, इट्स लाइक, अच्छा अगर कैन यू, द इशू बिकम्स कैन यू चीट समबडी in that situation, right? Ideally you shouldn't, so still try and avoid cheating and everything of anybody, par aapko aapke enemy ke paas jaake, to वैसे तो we say ki you shouldn't bow down to your enemy, right? But in such situation you might have to bow down to your enemy, you might have to seek help from somebody who's your biggest opponent, jo aapke samne jo sabko fir bolta bhi fir hai ki dekha maine usko ye kar diya, theek hai. But even at that point survival is the most important, right? You may have to go to your most competitive organization, your biggest competitor, and tell them, "Yaar, please help me out." Right? It is, you might have to do it at that point in time and maybe start again. But at that point, do it, because survival is more important. When you survive, you will have a chance to come back and prove yourself.
It's so crazy ki itne bade bade shows, jaise Game of Thrones, Succession, Sopranos, ये HBO के सारे shows हैं, and a few other shows, they all have to do with power, family, authority, crime, administration, ultimately, आपके मतलब आपकी जो जो भी चीज़ें हैं वो सिक्योर रहे, आपका नाम बना रहे, पैसे आते रहे. इन सब में ना जो मैंने कॉमन थिंग देखा है, इज लाइक मैसिवली अनईजी अलायंसेज एंड ऑफन विद एनिमीज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ क्राइसिस. बट आई थिंक ये कॉमन हम बिजनेस की स्टोरीज अगर इंडिया में देखते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर ने रेज करा है कोई फंड या ऐसा कुछ है, वी नेवर हेयर अबाउट दिस साइड कि जहां पे लोगों को इतने ब्रूटल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े वहां तक पहुंचने के लिए. वी ओनली हेयर अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी. बट आई एम श्योर अगर आप किसी के बोर्ड रूम में जाओगे, आपको पता लगेगा कि क्या क्या वॉर चलते हैं. आई एम श्योर यू हैव आल्सो सीन इट अप क्लोज डीलिंग विद कंपनीज.
इसलिए आप किसी का भी ऑटोबायोग्राफी देखो. If they are honest, you will always see this, right? Because it cannot be that you have not gone through something difficult in life. Where you've not, I mean, of course, it the intensity might change, right? Might differ. But you have to at times, what you thought you would never do. Isliye na mujhe bahut dar lagta hai to say main aise nahi kar sakti, waise nahi kar sakti. You never know, yaar, what life is going to bring in front of you. And at that time, what matters? Again, as Bhishma says, it is not to rationalize or justify your weaknesses. No. Agar uske liye aap upyog kar rahe ho, wo to galat hi hai. It is only when there is a genuine need. So that you have to be honest with yourself. वो और कोई नहीं कर सकता. और वो कब आएगी honesty? आत्मजय, इंद्रिय विजय, तभी आएगी.
एक इंसान जिसने इंद्रिय पे विजय नहीं करा, उनका नाम है दुर्योधन. तो उनके बारे में चर्चा करते हैं. आपने लास्ट बोला था कि उनको फिर भी स्वर्ग प्राप्त हुआ. फिर आपने किताब में एक्स्ट्रा बताया आगे कि क्या एक्चुअली उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो वो आप थोड़ा बता सकते हो?
तो ना एक इस पुस्तक में महाभारत अनरावल 2 में, वैसे तो मैंने सारे डिस्कोर्सेज लिए हैं, जो कॉन्वर्जेशंस है विजडम रिलेटेड वो लिया है, पर एक इवेंट ली है विच इज दिस स्वर्गारोहण की. तो स्वर्गारोहण एकदम महाभारत के अंत में आता है. जब 36 वर्ष युधिष्ठिर और उन सब ने राज कर लिया है, और श्री कृष्ण का द्वारका में देह त्याग भी हो गया है, जो द्वारका डूब गई है वो सब हो जाता है, फिर इनको लगता है अब अपना भी समय आ गया तो हम अब जाते हैं. तो युधिष्ठिर जो है वो परीक्षित, जो अभिमन्यु का बेटा है, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, परीक्षित को राजा बनाते हैं, और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में वानप्रस्थ उस तौर पे निकल जाते हैं. एंड इवेंचुअली दे आर लाइक दिस इज द एंड, राइट? आप वानप्रस्थ में आ गए, मतलब इवेंचुअली यू डाई. तो वो स्वर्गारोहण की बात आती है कि एक पर्वत है, उस पर वो लोग चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे चढ़ रहे, फिर एक एक करके सब नीचे गिर जाते हैं, एक्सेप्ट युधिष्ठिर. और युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता है, जो हमेशा से, इनफैक्ट दैट्स द कवर आप अगर मेरा कवर देखो तो दिस इज द स्वर्गारोहण पर्व का चित्र, कि पांचों पांडव, द्रौपदी और साथ में वो कुत्ता, जो उनको पूरा ऊपर तक, मतलब वो पर्वत के ऊपर तक जो कुत्ता है वो रहता है, द्रौपदी और चार पांडव तो गिर जाते हैं। फिर युधिष्ठिर को इंद्र लेने आते हैं कि भाई तुम चलो, तुमको तो हम स्वर्ग लेके जाएंगे। एंड युधिष्ठिर कहता है अरे बट मेरे सारे जो भाई और पत्नी है वो तो यहाँ रह गए। एंड इंद्र सेज डोंट वरी, उनको तो हम ले गए ऑलरेडी, उनका देह त्याग हो गया है, एंड वैसे ही जनरली जाते हैं, ये तो तुम्हारे लिए स्पेशल कंसेशन है क्योंकि तुम धार्मिक थे, तो मतलब तुम उस लेवल के थे कि हम तुमको सशरीर लेके जाएं,
वीआईपी ट्रीटमेंट,
वीआईपी ट्रीटमेंट। तो वो कहता है नहीं, तो फिर आप मेरे साथ कुत्ते को भी ले चलो क्योंकि वो भी मेरे साथ ही रहा है। एंड लाइक नहीं, कुत्ता तो इम्प्योर होता है, ऐसे कैसे उसे ले चले, उनको तो यज्ञ में भी नहीं आने देते। एंड ही सेज नहीं, वो इतने टाइम मेरे साथ लॉयल रहा है, आई कैन नॉट गिव अप ऑन हिम, इसको नहीं ले जा रहे तो मुझे भी मत ले जाओ। तो वी गेट टू नो कि ये जो कुत्ता है वो दैट इज एक्चुअली धर्म, धर्मराज। जो वो इवन जो यक्ष प्रश्न में जो उसका टेस्ट लेते हैं, इट्स द सेम पर्सन, एंड ही इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि इस परिस्थिति में भी यू डिड नॉट गिव अप योर धर्म।
सो हिज धर्म सिंबलाइजेस अ डॉग,
ही टुक द फॉर्म ऑफ अ डॉग, ऐसे कहा
जाता है। ओके, बट धर्म इज व्हाट, इज ही अ गॉड?
हाँ, तो यमराज को धर्मराज कहा जाता है।
ओके,
तो इन इन दैट सेंस,
ओके ओके,
तो वो कहते हैं कि आई वांटेड टू टेस्ट यू वंस अगेन, जो यक्ष बन के यक्ष प्रश्न में,
जी जी जी, आपने उसका भी यहाँ पे आपने यक्ष प्रश्न यहाँ पे डाले में,
किताब में, करेक्ट। सो द सेम पोजीशन और द सेम ये डेटी जिसको आप कहते हो, तो इसलिए आई वांटेड टू टेस्ट यू कि मतलब कोई भी हो जो बोल रहा है अरे इंद्र आ गए स्वर्ग जा रहे हैं तो चलो ना, एनीवेज इट्स द एंड ऑफ लाइफ, बट यू स्टिल स्टक बाय योर डॉग, दैट इज व्हाट अ राजा मस्ट डू। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वो उसे ले जाते हैं। अच्छा, जब वो स्वर्ग जाते हैं तो उनको जो स्वर्ग के ऐशो आराम में दुर्योधन दिखाई देता है, और कोई नहीं दिखाई देता, कि उनको ना अर्जुन दिखाई देता है, ना भीम दिखाई देता है, ना द्रौपदी दिखाई देती है। तो इज लाइक अरे ये क्या, यहाँ स्वर्ग में दुर्योधन क्या कर रहा है,
तू क्या कर रहा है यहाँ पे?
जिसके कारण दुर्योधन युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके कारण मेरा पूरा कुटुंब तबाह हो गया, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, वो दुर्योधन यहाँ पे क्या कर रहा है स्वर्ग में? मुझे इसके साथ नहीं रहना, मेरे भाई और मेरी पत्नी कहाँ है, या मेरे सारे दोस्त कहाँ है? तो उनको नारद कहते हैं कि अरे अब तो तुम स्वर्ग में हो, ये जो पृथ्वी की तुम्हारी जो गिले शिकवे थे उसे छोड़ दो, है ना, उसके बारे में ज्यादा ये मत करो। बट ही इज लाइक नहीं, बट वेर आर माई पीपल? सो इंद्र टेल्स वन ऑफ द देवदूत्स कि इनको लेके जाओ, दिखाओ। सो देन वी आर टोल्ड कि वो जाते 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 हैं और ऐसे नर्क का सीन आने लगता है, गंदी गंदी बास आ रही है हर जगह, वो स्केलेटन्स हड्डियां पड़ी हुई है, वो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं और टॉर्चर चल रहे हैं लोग। एंड ही इज लाइक ये कहाँ आ गया, एंड उसको ही फीलिंग चक्कर जैसे आ रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू टेक इट, एंड ही इज लाइक और कितना दूर है, कहाँ जा रहे हैं हम? तो देवदूत कहते हैं अच्छा आपका हो गया तो हम वापस चल सकते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है पर ये कहाँ है हम, एंड ही इज नॉट श्योर कि अब तक वो मिले नहीं है, तो ही इज स्टिल फिगरिंग आउट क्या करे। तब उनको आवाजें आती है कि अरे महाराज आप मत जाइए, बिकॉज आपके आने से हमें थोड़ी ठंडक मिल रही है। एंड एक के बाद एक आवाज आती है, एंड ही स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग, ही सेज अरे ये तो अर्जुन की आवाज है, ये तो द्रौपदी की आवाज है, ये लोग यहाँ कैसे? एंड ही बिकम्स वेरी एंग्री, ही इज लाइक दुर्योधन स्वर्ग में है और ये लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं इस प्रकार, वो लोग तो इतने धार्मिक थे, उन्होंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, तो ये कैसा जस्टिस है? तो एक्चुअली वो जब दुर्योधन के बारे में पूछता है ना, तो नारद मुनि ये भी कहते हैं कि ही फॉट लाइक अ वॉरियर, एंड जो क्षत्रिय के जैसे फाइट करके निर्भय होकर युद्ध करके जो बैटल फील्ड पे युद्ध भूमि पे जिसका जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग मिलता है, दैट इज व्हाट दे से। तो अभी यहाँ पे ही सीन इन लोग को ऐसे है, इनका आवाज वो सुन रहा है, तो इज लाइक ये इनको ऐसा कैसा है? तो वो देवदूत कहते हैं आपके लिए नहीं है, आपको तो वापस जाना है, ठीक है? एंड ही इज लाइक नहीं नहीं मुझे वापस नहीं जाना है, अगर मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, अगर न्याय के प्रमाण से, न्याय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इनको अगर नरक है तो मैं भी नरक ही जाऊंगा, मुझे नहीं स्वर्ग चाहिए। तो ऐसे ही सेज, तो एज सून एज ही सेज दिस ना द होल सिचुएशन, द होल सीन चेंजेस, और वहां पे जो बास आ रही होती है वो चली जाती है, सुगंध आ जाती
Another
है
test.
बहुत सुंदर सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसा वहां वातावरण हो जाता है। एंड जो इंद्र है, धर्मराज है, सब लोग वहां आते हैं, एंड दे लाइक वी वांटेड टू टेस्ट यू।
सो मेनी टेस्ट फॉर युधिष्ठिर,
धर्मराज ऐसे ही थोड़ी है ना। सो ही इज लाइक वी वांटेड टू टेस्ट यू, एंड you did not run away from such an abhorrent situation. You did what is the right thing to do. And then they explained. They said ki koi bhi raja hota hai na, unse koi na koi galti, kuch na kuch to hua hota hai na kuch life mein. To karm ka siddhant सनातन के हिसाब से ऐसा है कि जो भी आप करोगे उसका फल आपको प्राप्त होगा, वो फल आपके हाथ में नहीं है. पर एक बुरा फल किया और एक अच्छा एक बुरा कर्म किया और एक अच्छा कर्म किया तो वो फिटूस नहीं हो जाते. ठीक है, जो भी आपका हुआ है, जो भी कर्म है, उसका आपको फल भुगतना पड़ता है. तो उनको कहा जाता है कि आपके लिए दिस एक्सपीरियंस वॉज अ दंड. ठीक है, वैसा ही उनके लिए भी वी हैड टू गिव देम अ अनुभव. अनुभव से भी ज्यादा कि मतलब ये मैजिक ट्रिकरी अनुभव ऑफ नरक हेल बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट इशू जो हुआ होगा. बट नाउ एवरीबडी इज इन स्वर्ग. ठीक है, एंड देन वो इंजंक्शन आता है कि पहले जो छोटा भाग है ना, हुएवर इज डन कम पुण्य कर्म will still get the benefit of punya karma because they have done the punya karma, but that will happen first. Aur jo zyada agar paap karma hai to wo baad mein honge. And it is the reverse for those who have done punya karma more. So when he goes back, he doesn't see Duryodhan, right?
Oh.
So Duryodhan might have also earned some punya karma, so he got that, and then he will, whoever would have seen that would be relegated to where they deserve to be. सिमिलरली फॉर दीज पीपल, जो पांडव थे उनको भी नर्क का एहसास करा दिया. बट वेन ही गोज बैक ही सीज दैट एवरीबडी हैज गॉन बैक टू देयर ओन फॉर्म्स. एवरीबडी, वो अर्जुन को देखते हैं, कृष्ण इज इन हिज नारायण फॉर्म, अर्जुन जो है वो नर फॉर्म में है, द्रौपदी जो है वो लक्ष्मी के जैसे जगमगा रही है. तो इस प्रकार से तो अगर इससे लोग ऐसी सीख लेते हैं कि दुर्योधन इट्स ऑल ग्रे लोग बात करते हैं कि कुछ यही नहीं है, दुर्योधन को स्वर्ग मिल गया, इनको नर्क मिल गया. नो, दैट इज ओनली हाफ द स्टोरी. दिस इज हाउ इट एंड्स.
दिस इज अ रेवलेशन.
द लेसन इज दिस कि कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है और फिटूस नहीं होता. जो जैसा करता है वो उतना तो उसे भुगतता है, पर क्या शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्गर टर्म है. एंड उसमें से और एक कथा आती है जो मैंने इंद्रधनु राजा की कथा भी कही है, कि जब तक आपकी स्मृति धरती पे रहती है तब तक आप उस लोक में रहते हो. मतलब अगर आपके पुण्य की स्मृति है तो आपको पुण्य लोक में आप अधिक रहोगे, और अगर आपकी पाप की स्मृति है तो आप नरकों में अधिक रहोगे. सो दैट इज वेयर इट देन इवेंचुअली एंड्स विद द नर वर्शिपिंग द नारायण.
आई थिंक मेरे मन में बहुत सिंपलिस्टिक नोशन था सनातन धर्म के हेवन और हेल का, लेकिन ये आपने एक नई चीज में चीज इंट्रोड्यूस करी है कि जितना अब वो लोग डिबेट कर सकते हैं कि क्या सच है क्या, पर कहानी के हिसाब से
वेदव्यास जी के महाभारत के अनुसार ऐसा है, विच इज गीता प्रेस वर्जन, बोरी वर्जन.
पर कहानी के हिसाब से मतलब लाइक अगर दुर्योधन ने 3-4 भले काम कर दिए हो तो उसको इनिशियल इंप्रेशन को देख के युधिष्ठिर क्रोधित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्ली लाइक द थिंग दैट आई वुड लाइक टू एंड ऑन इज, ठीक है अर्जुन अपने स्किल्स करते हैं सब कुछ, लाइक यू नो आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, राइट, बट आई थिंक द मोस्ट टेस्टेड, नीडलेसली टेस्टेड एट ऑल टाइम्स युधिष्ठिर, बट नाउ आई अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन दैट इज द प्राइस यू मस्ट पे टू बी किंग, राइट.
एब्सोल्युटली.
इफ यू वर अ मिनिस्टर, अ सेकंड इन कमांड, अगर आप प्रजा के हिस्सा होते हैं आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है. बट इन द आईज ऑफ गॉड हु इज द मोस्ट अकाउंटेबल, द मोस्ट चैलेंज्ड, इट्स द किंग, एंड यू ऑल्सो गेट ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग अ किंग.
Absolutely.
So, with that note, thank you so much. आपने दोबारा से अपना इतना कीमती वक्त दिया और आपकी किताब को पढ़ने का सौभाग्य मुझे दिया और आपके समक्ष ये प्रश्न रखने का सौभाग्य दिया. और मैं तो बोलता ही हूँ, आई थिंक द बुक्स यू हैव रिटन हैव इम्पैक्टेड नॉट जस्ट मी, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, द कंट्री एट लार्ज. एंड आई थिंक इररिस्पेक्टिव व्हाट पीपल से एंड दे गो टू सोर्स एंड से कि ये वो फलाना ढिमकाना, हम बेटर कीपर्स हैं सनातन धर्म के, इसको ऐसा नहीं बोलना वैसा नहीं बोलना. द फैक्ट दैट यू ओपन द फ्लड गेट्स टू गेट एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन दैट हैज लार्जली बीन कंटेन्ड और लॉस्ट. और मतलब मेरे को भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा क्योंकि मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि यार मैंने कभी इतना ध्यान नहीं लगाया. नहीं सोचता आदमी इतना ज्यादा ना कि कब कौन अलग से बैठ के उसका विश्लेषण करे. अगर यू कैन डू वट यूर हेयर टू डू, राइट, एंड इफ समवन कैन बिकम अ रिजर्वर ऑफ दैट नॉलेज एंड पास इट ऑन टू यू, आई थिंक इफ यू आर हेल्पिंग स्प्रेड धर्मा and there is no greater joy than that. So thank you so much.
Thank you so much. It's all Krishna Krupa at the end of the day. And I believe ki jab jo aana hota hai na, wo tab aata hai. To mujhe aaya uske to bahut jaldi tumko aa gaya hai. Because you're much younger and you've started learning this and you've started taking interest in this much before I did. So from that sense,
only because
very,
of
very
you.
Blessed. But you're very blessed. All Krishna Krupa.
Thank you. Only because of you. Only because you made it accessible. And obviously, log up to, we are recording right now, so the book is not out yet. But by the time this releases, what is the official release
date
of the book?
So 18th January 2024 is when the shipping will start. So pre-ordering okay. to shuru ho gaya hai.
Amazon?
Amazon hai, Padhega India hai. And mere khayal se ab to bahut saare is pe aa jayega. Because 18th, abhi bas 2-3 din baad to aa jayega.
Aur log aapko follow kar sakte hain Instagram pe, YouTube channel bhi yahan pe, jahan pe aapne apne Chanakya wale sessions bhi post kar rakhe hain. Theek hai. Thank you. Like I said, it's a privilege to be a friend. It's a privilege to be interviewing you about your books again and again. I hope to have this privilege for the rest of my life.
Thank you so much.
Thank you.